أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلي على محمد
سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ولادت اور شہادت خوشی اور غم دونوں قسم کے ایام اور اوقات اور ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصی طور پر اس کو مناتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش رہتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں ہم غمگین رہتے ہیں. اور یہ ایک بہانہ ہے تاکہ ہم ان معصومین کی یاد تازہ کر سکیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے گزار دی اور اپنی امامت کی ذمہ داریوں سے ذرہ برابر بھی پلک جھپکتے بھی جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں کی. اور ان ایام کو بنانے کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ بس خوش ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں یا مجلس میں چلے جائیں یا کوئی تہوار منا لیں. اصل میں ان ایام کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کے جو گہرے نایاب ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو حاصل کریں اور ان تمام خصوصیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت کو حاصل کر سکیں. علامہ ذیشان حضرت جوادی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور جس کتاب سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی اور گھر گھر ان کا نام پہنچا. ویسے تو ماشاءاللہ بہت بڑے مقرر تو تھے ہی، بہرحال نقوش عصمت ان کی ایک کتاب ہے اور جس سے بھی استفادہ کیا ہے ہم نے اس درس کی تیاری میں. انہوں نے اپنی کتاب جو کہ 14 معصومین کے حوالے سے لکھی گئی تھی، اور میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور اپنے گھر میں رکھیں. جس طرح اپنے گھروں میں قرآن مجید کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے یا دیگر کتابیں ہیں، اس میں نقوش عصمت کا اضافہ ضرور کریں کیونکہ یہ 14 معصومین پر مشتمل ایک جامع ترین کتاب ہے. علامہ ذیشان نقوش عصمت، اس میں 14 معصومین کا تذکرہ، ان کی سیرت اور تاریخ درج ہے. مولانا ذیشان حضرت جوادی اپنی اس کتاب نقوش عصمت کے دیباچے میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جب میں تاریخ ائمہ معصومین لکھنے بیٹھا یا ان کی سیرت کو کمپائل کرنے، تالیف کرنے بیٹھا تو تاریخ اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کن کن واقعات کو شامل کروں اور کن واقعات کو شامل نہ کروں. تو میں نے جس بات کو معیار جانا وہ یہ کہ جن واقعات سے ہمارا کوئی اخلاقی پہلو جو ہے وہ سدھر سکتا ہو، اس میں نکھار آ سکتا ہو، وہ ہم ضرور لیں. بہت سارے تاریخی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ جو غالباً حقیقت میں حق تو ہیں، حقیقت تو ہیں، لیکن عملی میدان میں اس کو کس طرح کیا جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ کوشش ہم نے بھی یہی کی ہے کہ آپ کے سامنے آج کے دن ولادت امام حسن کے دن آپ کے سامنے ان کی زندگی کے پہلو اس طرح اجاگر کریں اور وہ پہلو اجاگر کریں کہ جن کو اپنا کر آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور جس سے کوئی ایک پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کہ ٹپ ہمیں مل سکتی ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. اسی لیے ہم نے جو عنوان درس کا رکھا ہے وہ ہے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اخلاقی پہلو. چند باتیں سیرت امام کو کرنے سے پہلے، ہم بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے تاریخی واقعات، جیسے ہم ایام اعظم میں تاریخی واقعات سنتے ہیں، ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کے موقع پر ان کے زندگی کے واقعات ہم سنتے ہیں، تو واقعات کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. عموماً تاریخی واقعات میں یا ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی سماعت سے ضرور ٹکراتا ہے کہ جو نزاعی ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں اس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، اور مسا اوقات آدمی جو ہے اسی کنفیوژن اور کانفلکٹ میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور جب اس کا تسلی تشفی بخش جواب نہیں حاصل کر پاتا तो फिर थोड़ा सा बद्दिल भी हो जाता है। तो समझ लीजिए ये भी शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। जब वो देखता है कि मोमिन या मोमिना दीनी उमूर से गाफिल नहीं है और मेरे बहकाने के बावजूद भी उसने गुनाह छोड़ दिए हैं और नेकी की राह को अपना लिया है, तो अब उसमें वो शक की बीमारी पैदा करता है। शक जो है वो बाज़ोकात वज़ू में शक की सूरत में आपके सामने आता है, शक जो है बाज़ोकात वो नमाज में शक किया थे नमाज शक किया थे रकात की सूरत में आपके सामने आता है। इसी तरह जब आप कोई मजलिस सुनते हैं, कोई दर्स सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई शक आपके सामने, बल्कि वो तो छोड़िए आप सीरत मासूमीन, खुद कुरान कहता है कि ये वो किताब है जिससे बहुत से लोग गुमराही हासिल करते हैं और बहुत से लोग हिदायत हासिल करते हैं। तो ये उस वक्त होता है कि जब इंसान का ईमान कच्चा हो, ये उस वक्त होता है कि जब वो किसी की रहनुमाई के बगैर कोई किताब पढ़ रहा हो या कोई बात समझने की कोशिश कर रहा हो अपने कयास की बुनियाद पर, अपनी कम अकली की बुनियाद पर। और ये वो लोग होते हैं कि जो कमज़ोर ईमान रखते हैं और कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई उसको समझे बगैर ही जिसे कहते हैं आगे बढ़ जाने की कोशिश करते हैं, या ये वो लोग होते हैं जो बिला वजह किसी गैर अहम बात निजाई बात पर इतनी तवज्जो देते हैं कि अहम बात जो भूल जाते हैं। आपने असहाबे कहफ का किस्सा कुरान में पढ़ा होगा कि बाकायदा अल्लाह कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो तीन थे, चौथा उसमें कुत्ता था, कुछ लोग कहते हैं कि वो पांच थे, पांच छठा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो उनको कि वो कितने थे अल्लाह को मालूम है। असहाबे कहफ की बात करते हुए सूरह कहफ में अल्लाह ताला ये फरमाता है। अच्छा जब हमने ये पढ़ा तो हमने कहा अल्लाह ताला ने तीन आयते तीन जुमले नाऊज़ बिल्लाह इसमें ज़ाया कर दिए, तीन थे चौथा कुत्ता था, पांच थे छठा कुत्ता था, सात थे आठवां कुत्ता था, अल्लाह बता ही देता शुरू में वो इतने थे पर आगे बढ़ जाता। तो ये कहने की क्या जरूरत थी, बस अल्लाह ही को मालूम है वो कितने थे। अल्लाह ही को जब मालूम था तो अल्लाह बता देता कि भाई इतने थे और दैट्स इट। और कुफार का जो नज़ा था जो उनके दरमियान कन्फ्यूजन कॉन्ट्रोवर्सी थी जिस पर वो झगड़ा था ख़त्म हो जाता। गालिबन इसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला मैसेज देना चाह रहा है कि आप जो मैसेज है असहाबे कहफ का जो मकसद और पैगाम है उसको हासिल करें कि किस तरह हम अपने ईमान पर डटे रहे, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया, किस तरह अल्लाह ताला ने तवील उम्र जो है तूल उम्र उनको अता किया। इसी तरह कुरान में एक जगह ये भी है कि लोग जो है झगड़ते हैं इस बात पर कि दोज़ख के 19 फरिश्ते क्यों हैं, 19 क्यों भी 20 क्यों नहीं है। अच्छा 20 होते तो आप कहते 20 क्यों है, 200-250 होते तो आप कहते भाई इतने सारे फरिश्ते रखने की क्या जरूरत। तो असल मकसद ये नहीं है, वो तो जितने भी होंगे आप उस पर एतराज़ करेंगे, 12 इमाम क्यों है, 12 से ज़्यादा क्यों नहीं है, 14 मासूमीन क्यों है, 14 से ज़्यादा क्यों नहीं है, 1,24,000 क्यों है, 25-26 होते ताकि जो है वो मजीद 2-4 अंबिया आते नऊज़ बिल्लाह अभी तक तो और सिलसिला नबूवत। तो ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ निज़ाई हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है, और शैतान आपके दिलों में डालता है काउंटिंग्स जिसे कहते हैं, वो अल्लाह को मालूम है कि कौन सी चीज़ कितनी तादाद में पैदा करनी, कितनी कमियत में पैदा करनी है। आप अपना मकसद ज़िंदगी मकसद हयात उसमें से उठाएं और जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ जाए। तो हमें तारीखी वाकयात में अमली जो तारीखी वाकयात है उनको पकड़ना है, उनको समझना है और अपनी अमली ज़िंदगी में उनको अडॉप्ट करना है, उसकी नकल करनी है, उसकी तकलीद करनी है, और निज़ाई मामलात के पीछे नहीं पड़ना है। वरना फिर वही बात होगी कि आप जो है अगर कुरान में हरूफ़ मुक़त्तआत अलिफ़ लाम मीम यासीन और हाम मीम वगैरह के पीछे पड़ जाएं तो उम्र गुजर जाएगी, इसके मायने हमें बताए नहीं गए तो फ़ायदा क्या होगा। हालांकि कुरान के बारे में है कि वो हिदायत के लिए, लेकिन अगर आदमी फ़कत इसी के पीछे पड़ जाए तो वो नहीं समझ पाएगा, बल्कि कुरान की हर आयत इस बात का तकाजा करती है कि हम उस आयत को समझने के लिए उनके उसके उस्ताद उसको पढ़ा उसके ऊपर उसको पढ़ाने वाले यानी आइमा तहार से रुजू करें और उनसे पूछें कि कुरान की फ़लाँ आयत क्या कहती है। दूसरी अहम बात कि हमेशा याद रखें आपका मिशन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, विजन आइडियलिस्टिक होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाएं कि हमें आइमा की ज़िंदगी से क्या मिलना है, लेकिन आपका जो हदफ हो वो जन्नत हो, आपका हदफ दोज़ख ना हो। तो याद रखिए आदमी ख्वाब के लिए ही पूरी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसका जो अमल है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी मिशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल हो, विजन विजन जो है वो आइडियलिस्टिक हो। यानी आपको ख्वाब के पीछे भागना है, आपको उन चीज़ों के पीछे भागना है कि जो ऐसा लगता है कि नहीं पूरी होगी, यानी कि जन्नत किसी ने नहीं देगी जन्नत, लेकिन एक आइडियल है, एक आइडिया है, एक जिसे कहते हैं कि तखय्युल है, एक ख्वाब है जो आपने अपने जहन में बिठाया हुआ है, जिसकी खबर हमें आई इमाम मासूमीन ने दी है, और इसी बना पर कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमने इस ख्वाब इस बात पर यकीन कर लिया। लेकिन हमारी अप्रोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए, विजन चाहे हमारा आइडेंटिटी को। इसी तरह हिस्ट्री के बारे में एक बात बड़ी अच्छी की जाती है, और वो ये है कि हिस्ट्री हैपेंस ट्वाइस बिकॉज पीपल डू नॉट लिसन एट द फर्स्ट टाइम। हम कहते हैं कि हिस्ट्री दो बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट होती है। मजहब अहले बैत के मानने वालों पर मसलन जुल्म ज्यादती फकत आइमा के जमाने में नहीं थी, अभी भी जिसे कहते हैं कि वो रवा है, पहले ही लोगों को फकत शिया होने पर कत्ल नहीं कर दिया जाता था, बल्कि आज भी जो है उनको शिया होने पर कत्ल कर दिया था। आज भी इमाम बारगाहों पर जिसे कहते हैं कि धमाके होते हैं, लोग शहीद होते हैं, टारगेट किलिंग्स होती है, तो आज भी इन पे जो है वो नातका बंद है और जिंदगी जो है वो दोभर की हुई है। तो आपके सामने क्या है, जैसे मसलन कल का वाकया है, तो ये वाकयात अब भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, लेकिन हम आगे बढ़ के ये भी कहेंगे कि हिस्ट्री दो मरतबा नहीं बल्कि तीन मरतबा रिपीट होती है। दो मरतबा तो हो ही रही है, तीसरी मरतबा उस वक्त रिपीट होगी कि जब जालिम मजलूम की जगह और मजलूम जालिम की जगह, जब जालिम की गर्दन पे मजलूम का पैर होगा और लोग जो है वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेंगे। किस वक्त, जब एक शख्स जो खुद इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम की औलाद में से है, यानी जिनकी हम विलादत मना रहे हैं आज, उनके साहबजादे यानी इमाम जमाना जो है वो आएंगे और इस दुनिया को अदल से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। और आजकल जिस तरह जिस तवातुर से खबरें आ रही हैं, माहौल में तब्दीलियां आ रही हैं, फकत मजहब अहले बैत के मानने वाले नहीं, गैर शिया अफराद भी इस बात को, गैर मुस्लिम अफराद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में दुनिया में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, मुसलसल तब्दीलियां आई हैं और तब्दीलियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिंदगी और दुनिया का जो है वो माहौल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और लग रहा है कि हम किसी ऐसी जगह जाने वाले हैं कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा, एक बहुत बड़ी जंग होगी और एक बहुत बड़ा मुआरका होगा हक बातिल का। हालिया वक्त में जो बादशाह की मौत वाकई हुई है, हमारे यहाँ रिवायत में मौजूद है कि तुम मुझे अब्दुल्ला के जाने की खबर दो, मैं तुम्हें इमाम के आने की खबर देता हूँ, और उसके बाद आने वाले बादशाह महीनों के बादशाह होंगे, सालों के बादशाह नहीं होंगे। तो इस तरह के वाकयात जिसका तज़किरा हमारी रिवायतों में मिलता है, और इस तरह के लोगों का जो है लोगों अपने ही जैसे मुसलमानों का कत्लेआम करना जो है वो भी हमें एक जिसे कहते हैं कि नबी दे रहा है कि ये जो जुल्म हो रहा है कहीं ये सुफियानी का लश्कर तो नहीं तैयार हो रहा। इसी तरह जो खुशहाली की बातें हो रही हैं तो क्या कहीं दज्जाल का लश्कर तो तैयार नहीं हो रहा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि खुशहाली के चक्कर में दज्जाल के फितरों को और इनके लश्करियों को, इनके मानने वालों को जिसे कहते हैं ज्वाइन कर लें, इनका हाथ थाम लें, या बज़ाहिर मुसलमान नजर आने वाले सुफियानी के लश्कर के लिए मुकदमा तैयार करने वाले लोगों को के ग्रुप में शामिल हो जाए। आपको खामोश रहना है और ये देखना है कि हमें इमाम के ज़हूर के लिए क्या तैयारी करनी है, और जब वो ज़हूर करेंगे तो क्या हम नाउज़ु बिल्लाह उनके आने से पहले ना उम्मीद होकर या जल्दबाजी या बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कहीं इन दो ग्रोह में से तो किसी ग्रोह में नहीं शामिल होने जा रहे या शामिल हो जाएंगे। तो बहुत सुकून से इमाम के जहूर की तैयारी करें और मुकम्मल तौर पे अपने आप को तैयार करें। किसी भी वक्त अगर इमाम का जहूर हो तो आप ये ना कह सकें कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, या मुझे इसे कहते हैं कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमाम का जहूर जिसे कहते हैं कि हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता आपकी हमारी ज़िंदगी में हो जाए। लेकिन महाराज जो निशानियां जो अलामत बताई गई हैं गैर हतमी अलामत, वो एक जैसे कहते हैं कि तरह से पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं और हमें मुकम्मल तौर पे इसके लिए अपने तौर पे ज़ाती तौर पे तैयारी कर लेनी चाहिए। आइए इमाम की नक़्शे हयात की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले इस ज़मन में मुख्तलिफ़ मराहिल जो आएंगे, सबसे पहला मरहला तआरुफ़ का है, उसके बाद बादशाहान वक़्त, उसके बाद तीसरा मरहला इब्तिदाई अय्याम, इमाम के रोज़ो शब कैसे गुजारा करते थे, अहमियत नमाज उनके सामने क्या थी, उफ़ व दरगुज़र जो कि उनके अखलाक का एक हिस्सा था, मर्द मैदान यानी फ़कत इबादत के लिए मशहूर नहीं थे बल्कि हर वो عمل ہے وہ فعل ہے وہ خصوصیت جو ایک مرد میں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھی. طبیب یگانہ بھی تھے, مفسر قرآن بھی, نہ صرف مفسر قرآن تھے بلکہ محافظ قرآن بھی تھے. اس کے بعد نہ صرف محافظ قرآن بلکہ مکمل طور پہ محافظ اسلام بھی. کیا کیا کرامات تھیں, کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے ہمیں ان سے, شہادت امام اور پھر امام کے اقوال حکیمانہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو امام کے اقوال زرنی اور ان کے کلمات کے مطابق ڈھال سکیں. تو سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں. امام کا جسے کہتے ہیں کہ مختصر سا تعارف, یہ ہیڈنگز آ جائیں گی ون بائی ون, تو اس میں ایک ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو. پہلا مرحلہ تعارف, اس میں گرامی حسن. دیکھیے ہمارے جو دوسرے امام تھے ان کا بھی نام حسن تھا, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہمارے دوسرے امام کا نام بھی امام حسن تھا, اور ہمارے جو ہے سیکنڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ امام حسن تھا. تو ایسی ریپیٹیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈبلنگ کی, ریپیٹیشن کی کیا ضرورت تھی, اور ہمارے یہاں تو ایک عجیب فیشن ہے کہ نام ایسا رکھو جو کسی نے نہ رکھا ہو, چاہے اس چکر میں آپ جو ہے وہ انڈین اداکاروں کے نام رکھ لیں, ہندو والا نام رکھ لیتے ہیں, لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے, بڑا ہی منحوس نام ہے اور یہ فلاں فلاں کا نام ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں اچھا لگا, آج کل چل رہا ہے تو ہم نے رکھ لیا جسے کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ نام کی جدت پسندی پہ نہ جائیے, نام کے مفہوم پہ جائیے. نمبر ایک. نمبر دو, اہل بیت سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اہل بیت کے خانوادے کے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ناموں سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اور یہ بھی دیکھ لیجیے اہل بیت میں سے نعوذ باللہ کوئی یہ بات ناپسند نہیں کرتا کہ بھائی یہ نام تو پہلے امام کا ہو چکا ہے تو میں کیوں نام رکھوں, یہ مجھے ایک نیا نام, ایک نئی آئیڈینٹی دی جائے. ہمارے تین آئمہ کے نام جو محمد میں, اولنا محمد واخرنا واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد, یہ حدیث ہے اور حقیقت عالمی حال بھی ہے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام, پانچویں امام کا نام اور آخری امام کا نام, دونوں کا نام محمد. اسی طرح حسن بھی آتا ہے, اس طرح علی رضا, علی نام بھی جو ہے آٹھویں امام کا اور جو ہے وہ پہلے امام کا بھی نام. اس میں جو دو دوسری اہم وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ غالباً امام کا مقصد یہ ہو کہ اس زمانے میں, جیسے اس زمانے میں کیا اب بھی حکمران طبقے کا اور جو اقتدار میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے علی کے ماننے والوں سے ڈر رہتا ہے, کیونکہ یہ حق پر ہوتے ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں, ان کے جو امام ہیں وہی خلافت کے حقدار ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس گروہ کو, اس گروہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کس طرح کچلا جائے, ان کو کمزور کیا جائے, اور طرح طرح سے طریقے اپنائے جاتے ہیں, جاسوسیاں کیے جاتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کا کھوج اور پتہ چلایا جا سکے. اور سب سے اہم, سب سے آسان سی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نام آپ پوچھ لیں, اس نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ. امام نے اپنی ہی اولادوں, بلکہ اپنے ہی اولادوں میں سے آنے والے آئمہ کے نام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہی چنے, اور بار بار ان کا ناموں کو جو ہے ریپیٹ بھی کیا. تو اس کی وجہ یہی کہ اپنی اولادوں کے نام تم اہل بیت کے نام پر رکھو, اور اس میں چندہ کسی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سعادت کو جو ہے اپنانے کی توفیق دے گا, اور ان ناموں کے اثرات بحال ہوتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی نام رکھتا ہے وہ اپنی نام کی لاج رکھنے کے لیے ضرور بال ضرور شعوری یا غیر شعوری طور پر کوشش ضرور کرتا ہے. کنیت ابو محمد, اور کنیت آپ کو معلوم ہے بیٹے کے نام کے حوالے سے اور خصوصاً بڑے بیٹے کے نام کے حوالے سے ہوتی ہے, ابو محمد یعنی محمد کے والد. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بارے میں امام کا نام حقیقت میں محمد ہے, لقب ان کا مہدی ہے. اور ولادت ان کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری, شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بالکل جو ہمارے یہاں خوشی کا دن منایا جاتا ہے, ایام اعزہ ختم ہوتے ہیں یا سوگ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے, وہ 9 ربیع الاول ان کی تاریخ ہوتی ہے, اور 8 ربیع الاول کو آخری جسے کہتے ہیں کہ غم کا دن ہوتا ہے, اور اتفاقاً اس دن جو ہے وہ امام کی شہادت کا بھی دن ہے. عمر مبارک جو ہے 28 سال ہے, دور امامت 6 سال, تقریباً ان کی عمر 22 سال تھی جب ہمارے 10ویں امام کا की शहादत हुई, इसके बाद यानी समझ लीजिए 22 साल के थे, और उसके बाद उनको 6 साल का दौरे इमामत मिला, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने इमामत का हक अदा किया। मादरी ग्रामी के बहुत सारे नाम तवारीख में मौजूद हैं, मशहूर हैं। हुदैसा एक नाम है, एक जगह उनका नाम सुलैल भी मिलता है। बिहारुल अनवारी में उनके नाम हरीबा और सोसन भी दर्ज है। ये चारों नाम बिहारुल अनवार में आपको मिल जाएंगे, हुदैसा, सुलैल, हरीबा, सोसन। वालिद ग्रामी 10वीं इमाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक बात अहम इसमें नोट कर लीजिए, हमने ब्रैकेट में लिखा भी है 16 साल। इमाम नकी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 16 साल थी जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो यहाँ पे हम ये झगड़ा कर रहे हैं कि बच्चों बच्चियों की शादियाँ जल्दी कर देनी चाहिए 25 साल में, या जैसे इमाम अली के हवाले से हम कहते हैं कि 21 साल उम्र थी शादी की, तो कम अज़ कम 21 साल हो। तो उसमें लड़के स्पेशली बड़ा जो है बुरा मनाते हैं कि इतनी जल्दी शादी करूँ, पहले अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, अभी तो इंजीनियर बनना है, अभी तो मुझे बिजनेस अपना सेटअप करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ इमाम की उम्र 16 साल थी जब उनके बेटे की विलादत हुई। तो ये आप देख लीजिए, कम उम्र में शादी खुद हमारे आइम्मा की सुन्नत रही है। तो जितनी जल्दी शादियां होंगी इंशाअल्लाह उतनी ही जल्दी आपको जो माहौल की फहाशी, माहौल की उरियानी, माहौल की जो है बेहारवी, गुमराही की जो गलाजतें हैं, उनसे इंशाअल्लाह आपको दूरी का सामना जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी इसकी तफसील इंशाअल्लाह हो सकता है अगली दफ़ा आपका जो लेक्चर हो वो इसी हवाले से हो, मोहब्बत या वैलेंटाइन डे के हवाले से, क्योंकि 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो हम इंशाल्लाह एंटी वैलेंटाइन डे मनाएंगे और इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले दर्स में। ज़ौजा मोहतरमा सैकल भी इनका नाम मिलता है और नरजिस खातून भी मिलता है। ये कैसरे रूम की पोती थी और शमऊन जो कि वसी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नवासी थी। बड़ी तफसीली गुफ्तगू, बड़ा तफसीला वाकया मिलता है वो किस तरह जो है उन्होंने अपने आप को बतौर कनीज बनाकर बेचा बाजार में, और किस तरह वो इमाम के घर तक पहुंची और उनकी शादी जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हुई और उनके वतन से इमाम ज़माना तवल्लुद हुए। तो वो इंशाल्लाह कभी हुआ तो वो तफसील आपके सामने पेश की जाएगी। अलकाब इमाम के सामित यानी खामोश रहने वाला, हादी हिदायत देने वाला, रफीक दोस्त, ज़की इंटेलिजेंट, सिराज अस्करी इब्न रज़ा। अस्करी के हवाले से ये जहन में रखिए कि ये जहाँ रहते थे, अमूमन लोगों का नाम जहाँ पैदा होता है शख्स वहाँ के हवाले से होता है। जब कहते हैं ना खुरासानी यानी खुरासान का रहने वाला, सीस्तानी यानी सीस्तान का रहने वाला, ईरानी यानी ईरान का रहने वाला, वगैरह वगैरह। इमाम पैदा तो मदीने में हुए थे लेकिन तकरीबन 4 साल की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, अपने वालिद इमाम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सामर्रा वारिद हुए। और आपको मालूम है उस ज़माने के तो जो बादशाह ने वक्त हुआ करते थे आइम्मा के ज़माने में, वो बहुत ज़्यादा इमाम को फ़कत तंग करने की गर्ज से अपने दरबार में तलब किया करते थे। और मकसद ये हुआ करता था कि या तो उनको जिंदान में डाल दिया जाए किसी बेजुर्म जुर्म किसी ऐसी खता जो उन्होंने की ना हो, और या तो उनको नाउज़ बिल्ला बेइज्जत किया जाए सारे बाजार सारे दरबार आवाम के सामने, कभी इल्मी हवाले से और कभी जो है वो जंगी हवाले से, या कभी किसी करामात या जादू के हवाले से कि अगर मुल्क में कोई आलिम बादशाह को पसंद आ जाए कि बहुत ज़्यादा इल्म रखता है तो वो फौरन कहता है कि इसको मैं इमाम से कंपटीशन करवाऊंगा, इसका उससे लड़वाऊंगा और देखूंगा, मनाजर करवाऊंगा, देखूंगा किसका इल्म ज़्यादा है, पता भी चल जाए किसका इल्म ज़्यादा है। और इमाम अगर नाऊज़ बिल्लाह हार गए तो इमाम की बेइज्जती हो जाएगी। इधर कोई जादूगर अगर नजर आ गया उसको तो वो कोशिश करता था उस जमाने का बादशाह के बादशाह जादूगरों को इमाम से लड़वा दे और देखे कि इमाम के पास कितनी करामात हैं, जैसे फिरौन ने अपने ज़माने में किया था। लेकिन हर दौर में हर शोबे में बादशाहों को मुँह की खानी पड़ी और हमेशा वो खुद अपने ही दरबारियों के सामने जो है वो जलील हुए। तो इमाम नकी और इससे पहले जितने भी इमाम थे बादशाह ने वक्त उन पर एक नज़र रखते थे, बल्कि आपने सुना भी होगा कुछ बादशाहों ने तो अपनी बेटियों की शादी भी जो इसलिए कर दी थी कि वो जासूसी करें और पता चलाएं कि इमाम जो है वो किसी साजिश को तैयार तो नहीं कर रहे। तो इमाम अली नकी को मतलब उस पर उन पर शक था कि वो जो है वो तैयारी कर रहे हैं बादशाह के खिलाफ किसी इकदाम की बगावत, भी उनको तलब कर लिया और फिर उनको जिंदान में डाल दिया और हमेशा के लिए जिसे कहते हैं कि जिंदान में डाल दिया कि वो वहाँ रहे और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ, शहादत हुई इनकी। और उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी, हमारे 11वें इमाम की 6 साल मजीद जिसे कहते हैं कि वो जिंदा रहे। तो आप देख लीजिए, जो शख्स 4 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ आया हो और उस 4 साल के बाद बेशतर औकात जो उसको जिंदगी में जिसे कहते हैं कि डाला गया हो और वो जिंदगी में ज़्यादातर रहा हो। और ये भी बात हम आपको बताते चलेंगे, इमाम ज़माना की गैबत तो बहुत मशहूर है कि वो गैबत में है, गैबत में है, तमाम आइम्मा जो है वो लोगों के सामने रहे। लेकिन ये जो इमाम है, एक तो हमें इमाम हिफ्तम के बारे में मिलता है, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो 14 साल जिंदान में रहे। लेकिन ये इमाम भी जो है बेशतर औकात उन्होंने जो है बेशतर वक्त अपनी जिंदगी का जिंदान में गुजारा और इतना ज्यादा लोगों की नजरों से उजल रहे कि यूं समझिए लोग इनको भी गैबत में समझने लगे। ये यूं समझिए कि इनकी जिंदगी की गैबत मुकदमा थी इमाम ज़माना की गैबत का, कि लोग गैबत के आदी हो जाए और लोगों को ये एहसास हो जाए कि हमारा इमाम गैबत में भी जा सकता है, बहुत अरसे तक हमारी नजरों से ओझल भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमें उनकी हिदायत पर मुसलसल अमल करते रहना है। इब्न रज़ा इसलिए कहा जाता था उनको कि ये इनके वालिद यानी इमाम लकी खुद रज़ा के नाम से मशहूर थे, यानी उनका लकब जैसे इमाम अली रज़ा का लकब जो है वो रज़ा था, इमाम अली रज़ा के लकब के बाद ये जो लकब जो है इमाम नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी था। तो ये अपने जद और अपने बाप के लकब से भी मशहूर थे क्योंकि इनके बाप और इनके जद लोगों में मकबूल बहुत थे। अच्छा, इसके बाद अच्छा अस्करी रह गया। अस्करी के हवाले से याद रखें कि जहाँ ये गए थे वो इलाका बड़ा सरसब्ज़ और शादाब था, और अस्करी उसको इसलिए कहते थे कि ये एक तरह का मिलिट्री बेस था, फौजी छावनी जिसे कहते हैं, कंटोनमेंट जिसे कहते हैं। और बादशाह था उस ज़माने में मुअतसिम बिल्लाह, वो एक ज़माने में जब वहाँ से गुजर रहा था तो ये तुर्कों की जायदाद थी, इराक तुर्की फौज के साथ गुजर रहा था, तो ये जो जायदाद थी ये ईसाई पादरियों की थी और ये बहुत खूबसूरत बाग था उस ज़माने में। उसको ये बाग बड़ा पसंद आया, उसने कहा कि मैं यहीं पर रहूँगा और अपनी फौज की भी तरबियत यहीं करूँगा, उसको यहीं रखूँगा। तो उसने बाकायदा यहाँ पड़ाव डाल लिया और इतनी खूबसूरत जगह थी कि उसने देखते ही उसके मुँह से निकला सुर्रमन राय, यानी वो जगह जिसको देख के, वो चीज़ जिसको देख के दिल खुश हो जाए। ये जो नाम है सुर्रमन राय, समर्रा का दूसरा नाम, ये मुअतसिम बिल्लाह का दिया हुआ है और लोगों में मशहूर हो गया। तो सुर्रमन राय बेसिकली एक गार्डन था, बहुत बड़ा बाग था कि जिसको उसने ईसाई पादरियों से ख़रीदा। और सुर्रमन राय इस बाग के बराबर में बहुत बड़ी आबादी थी जो हकीकत में समर्रा थी, लेकिन समर्रा शहर बड़े होते होते इतना बड़ा हो गया कि सुर्रमन राय यानी फौजी छावनी वाला इलाका, वो बाग जो मुअतसिम बिल्लाह ने ईसाई पादरियों से ख़रीदा था, वो उसमें शामिल हो गया। अब लोग सुर्रमन राय समर्रा को एक ही जैसा समझते हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। हकीकत में सुर्रमन राय एक गार्डन का नाम था कि जहाँ पे उसने अपनी फौजी छावनी बनाई थी और उसके साथ शहर था समर्रा। बहरहाल सुर्रमन राय इज अ पार्ट ऑफ समर्रा नाम, उसका हिस्सा। जैसे कराची में बहुत सारे इलाके जो इस वक्त कराची के मज़ाफात कहलाते हैं वो किसी ज़माने में कराची में शामिल ही नहीं थे, और ये बड़े शहर की खूसियत होती है कि वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है के आसपास के छोटे छोटे इलाके भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे काजमैन है, वो बगदाद में नहीं था लेकिन अब उसको बगदाद का हिस्सा जैसे कहते हैं कि समझा जाता है। बहरहाल तो ये बड़ा पुरफजा मुकाम था, इसने अपनी फौजी छावनी बनाई। और ये भी कहते हैं कि इसने इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम को तलब ही इसलिए किया था कि अपनी फौजी शान और शौकत का मुजाहरा कर सके। तकरीबन 90,000 फौज की परेड दिखाई गई बकायदा, और इमाम को इसलिए दिखाया गया कि देखो तुम अगर चाहते हो या तुम्हारे दिल में कोई वहम गुमान है कि तुम हमारे खिलाफ बगावत करोगे या कामयाब हो जाओगे तो भूल जाओ, ये 90,000 की फौज है हमारे पास, तुम क्या मुकाबला करोगे इसका, नाउज़ बिल्लाह। इमाम ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, उसको कहा कि मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। और जब उस बादशाह ने इमाम की दो उंगलियों के दरमियान देखा तो इमाम की असल फौज नजर आई जो कि फरिश्तों की सूरत में आसमान से नज़ूल कर रही थी, यानी वो फौज जो बदर में रसूलल्लाह के लिए इमदाद के लिए मदद के लिए उतरी थी। जब उसने देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा कि मैं इस फौज का कैसे मुकाबला करूंगा, मेरे पास जो फौज है वो जमीनी है और इमाम के पास जो फौज है वो आसमानी है। इमाम ने बतला दिया कि देखो अगर मुकाबले की और ताकत की बात करते हो तो हम तुमसे ज्यादा ताकत रखते, हम अकेले ही काफी तुम्हारे मुकाबले के लिए, लेकिन मसलियत खुदाबंदी है कि हम क्याम ना करें, मसलियत खुदाबंदी है کہ ہم خاموش بیٹھے رہے, مسئلہ تو خداوندی ہے کہ ہم کوئی عملی اقدام تمہارے خلاف نہ اٹھائیں. تو بہرحال خوف اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو پریشانی تو تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے امام کو زندان میں ڈال دیا اور تنگ آ کے پھر جو ہے جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو امام کو زہر دلوا دیا. اور اس کے بعد اس کے آنے والے بادشاہوں نے بھی وہی کام کیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دے کر ان کی جو قتل کیا گیا ان کی شہادت ہوئی. نقش انگشتری یعنی ان کی انگوٹھی جو تھی تو تھی, انگوٹھی میں ایک نقش یعنی اس پہ لکھائی بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, سبحانہ من لہ مقالید السماوات والارض, پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں, پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں. اور کچھ روایت کے مطابق امام کی انگوٹھی پہ یہ بھی نقش تھا کہ انا للہ شہید یا انا للہ شہید, یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایک رواج ہے, دیکھیں انسان کی فطرت انسان کا نیچر تو وہی رہتا ہے, انسان انسان ہے. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف قسم کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں اور جسے کہتے ہیں شرٹس پہنتے ہیں اس کے آگے یا پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے یا کوئی نشان بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی کیپشن یا لوگو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں, اور اس لوگو یا اس کیپشن کو جسے کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے, بعض اوقات وہ برانڈ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بھئی ہم ایسے لباس پہننے کے بجائے ایسی انگشتری ایسی انگوٹھی کیوں نہ اپنے ہاتھوں میں پہنے کہ جس میں کچھ لکھا ہو, آئمہ کے نام لکھے ہو, کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی ایسا قول لکھا ہو جس کو دیکھ کے جس کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ اضافہ ہو. اب دیکھیے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ تم جہاں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اب یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ نہیں, انا للہ شہید ہوں, میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر آپ یہ آیت یا یہ جملہ اپنی انگوٹھی پہ لکھوا لیں یا اپنے سامنے رکھیں اپنے ذہن میں دہراتے رہیں, تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی شخص گناہ کر سکتا ہے اگر مسلسل بدستور وہ اپنے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں اللہ کے سامنے ہوں, میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, تو کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اور علماء کرام جو اتنے تقوی کے اعلیٰ منزلوں پہ تھے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھتے تھے. مقدس ربیلی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر سمجھتے تھے. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جسے کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول میں کچھ اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ آیات اور روایات یا ایسے جملے لکھوا لیں یا توہرا بنا کے جسے کہتے ہیں کہ دیواروں پہ لٹکا دیں گے, جس کو دیکھ دیکھ کے جس کو پڑھ پڑھ کے آپ کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا رہے. ایسی ایبسٹریکٹ آرٹ کی پکچرز یا ایسے باز یا ایسے ڈیکوریشن پیسز جن کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں ہوتا, وہ رکھنے کی بجائے وہ سجانے کی بجائے اگر آدمی آیات و روایات سے اپنے گھروں کو اپنے لباس کو یا اپنی آس پاس کی چیزوں کو سجائے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ پہ فٹ بالرس کی تصویریں ہوتی ہیں یا کسی پرفضا مقام کی تصویر ہوتی ہے, تو آپ اس کی بجائے کسی امام کی زرعی یا روزے کی تصویر ڈال دیں یا کسی امام کا قول ڈال دیں یا کوئی ایسی تصویر جس سے جو ہے وہ آپ کو قرآن کی آیت مثلاً سے خدا یاد آ جائے, تو کبھی اس چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا ان شاء اللہ. وہ آیت وہ روایت وہ تصویر آپ کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرتی رہے گی. بادشاہانی وقت واثق باللہ جب آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے, اس کے بعد متوکل, پھر مستنصر, پھر مستعین, پھر معتز باللہ, پھر مقتدی اور پھر معتمد. متوکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یزید ثانی تھا, بلکہ اپنے کرتوتوں میں گناہوں کے اعتبار سے کسی طرح بھی یزید سے کم نہیں تھا. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے پہلے کے بادشاہوں نے تو آئمہ پر ظلم کیے, اس شخص نے آئمہ کے روزے مبارک پر ظلم کیا. اور یہ وہ شخص تھا ملعون کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی اور دریائے فرات کا رخ امام کی طرف کر دیا. یعنی اس طرح کھدائی کی دریا سے کہ ایک بہت بڑی नाली या जैसे कहते हैं कि नहर खुदवाई के सारा पानी उसमें जमा हो जाए और पानी इतने फ्लो से इतने फोर्स से इतनी ताकत से आए कि नाउज़ बिल्ला इमाम की कब्र को बहा ले जाए और या उसके ऊपर से गुजर जाए। और जब इमाम की कब्र के ऊपर पानी होगा दरिया बह रहा होगा लोगों को पता ही नहीं होगा इमाम की कब्र का और वो लोग इमाम की कब्र को भूल जाएंगे और ज्यारत भी नहीं हुआ करेगी, लोग ज्यारतों पर भी नहीं आया करेंगे। और हकीकत में इन लोगों को हसद हुआ करता था जब वो देखते थे कि हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी आसपास मौजूद हैं, मसलन सामर्रा में मौजूद हैं और जगहों में मौजूद हैं, छह बादशाह मतलब सामर्रा में गुजरे हैं उनकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं लेकिन कोई शख्स जो है वहाँ पे नहीं मिलता जिसे कहते आने जाने के लिए। और अभी भी आप सुनते होंगे कुछ बादशाहों की कब्रों के आसपास तो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, जानवर हैं, गंदगी है, तो वो उससे बहुत खौफ खाते थे, गुस्से में आते थे कि ये क्या है, हमारे पास इतना मालो असबाब है इसके बावजूद हमारी इज्जत की कब्रों में कोई नहीं जाता और इन आइम्मा की कब्रों में सब जाते हैं। तो इस मलून ने ये कोशिश की किसी तरह इमाम हुसैन की कब्र का निशान में मिटा दूं ताकि जो जायरीन आते हो ना, कहते हैं कि दरिया फरात का पानी आया और इमाम की कब्र पे आने से पहले रुक गया और फिर इमाम की कब्र का तवाफ करने लगा। और यकीनन हमें उम्मीद है कि रो रो के तवाफ कर रहा होगा कि इमाम जो है वो आ रहे थे और आ ना सके मेरी तरफ, मैं खुद ही आ गया लेकिन मैं नाउज़ बिल्लाह इनकी जिसे कहते हैं कि ये जिसारत नहीं कर सकता कि इनकी कब्र को भी छू। तो ये मलून जो है वो अच्छा यही वो मलून था कि जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता था अललान बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी करता था अललान इतनी ज़्यादा गुस्ताखी कि खुद इसके दरबारी तंग आ गए थे। अब अंदाज़ा लगा लें कि बनु उमैया के हवारी, बनु उमैया के गुजरा, बल्कि खुद उसका बेटा मुस्तंसर के बारे में आता है कि वो खुद परेशान हो गया कि मेरे वालिद कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ते जा रहे हैं। उसने बाकायदा उलमा से फतवा लिया और अपने बाप को कत्ल कर डाला और फिर जो है वो खुद बादशाह की मस्जिद पे बैठ गया। अब इस पर कितना मुहिब्बे अहले बैत की वजह शामिल थी और कितनी जो है खुद उसकी ख्वाहिश या लालच शामिल थी बादशाह की, वल्लाहु आलम। बहरहाल उसके बाद मुस्तईन बिराजमान हुआ, इसने भी बहुत कोशिश की इमाम को सताने की और उसके बाद मोतस बिल्ला जिसने इमाम को जहर देके शहीद किया, इनके वालिद को इमाम नकी अलैहिस्सलाम को, फिर मोहतदी और फिर मोहतम मित ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को शहीद किया, इनके वालिद को इमाम नकी को मोतस बिल्ला ने और ख़ुद इनको शहीद करने वाला मोहतमित था। ये बादशाहानी वक्त है और इनके करतूत थे कि जिन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने अपने ज़माने के आइम्मा को किस तरह परेशान किया जाए और उनको अपने काम ना करने दिए जाए और हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहे कि कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश तो तैयार नहीं हो रही। तो एक वाक़ा इमाम के बचपन के हवाले से मिलता है और ये वाक़ा अपने बच्चों को आप ज़रूर सुनाएं। जो बच्चे ये कहते हैं कि अम्मी अभी हम छोटे हैं, हम नमाज़ क्यों पढ़ें, अभी हम बालिग नहीं हुए, हम हिजाब क्यों करें, अभी जो है हम तो रोज़े नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुए तो हम इबादत क्यों बजाए लाएँ। तो एक दफ़ा यही हमारे इमाम जो है बिल्कुल जिसे कहते कम उम्र में बचपन में कहीं खड़े हुए थे तो बहरुल दाना का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा इमाम जो है अलग अलग खामोश खड़े हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो बहरुल दाना ने कहा कि आप क्यों खामोश खड़े हैं, आप क्यों अलग अलग खड़े हैं, क्या आपके पास कोई खिलौना नहीं, मैं आपके लिए खिलौना ला दूँ। तो इमाम ने कहा कि हम लहू लाइब खेलकूद के लिए पैदा नहीं हुए। इमाम ने कहा अभी तो आप नाबालिग हैं, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आप खेल सकते हैं। तो इमाम ने फिर वाज़ो नसीहत की कि हम जो है वो इस काम के लिए पैदा नहीं हुए। तो वो बड़ा जिसे कहते हैं कि परेशान हुआ कि भाई आप बच्चे हैं, आप पे कोई जिम्मेदारी कोई वाजिबात तो है नहीं। तो इमाम ने देखिए कितनी अजीब बात की, क्या स्ट्रेटेजी क्या हिकमत थी जो आप बच्चों को समझा सकते हैं सिखा सकते हैं। क्या कहा इमाम ने कि मैंने अपने बचपन में अपनी माँ को जब खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हुए देखा था तो मैं ये देखता था कि मेरी माँ पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ आग में डालती थी ताकि आग भड़क उठे और उसके बाद बड़ी लकड़ियों को डालती थी। तो आग जो है छोटी लकड़ियों से जलती है, बड़ी लकड़ियों से नहीं। मुझे ये खौफ है कयामत के दिन अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला जो है वो दोज़ख में बच्चों को पहले ना डाले दोज़ख की आग भड़काने के लिए और फिर बड़ों को डाले बड़ी लकड़ियों की तरफ। अब देखिए इमाम की हिकमत अमली क्या, अगर आदमी खौफ खुदा पैदा करना चाहे तो हज़ार तरीके से पैदा कर सकता है और आदमी अगर जैसे कहते हैं खुदा को नाराज करना चाहे, अपने नफ्स को खुश करना चाहे तो उसके भी हज़ार तरीके मौजूद हैं। ये तरीका अपने बच्चों को सिखाएं। वो लड़की जो 8 साल तक हिजाब ना करे, 9 साल तक हिजाब ना करे और 9 साल के फ़ौरन बाद कह दिया जाए कि तुम जो है आज से तुम्हें हिजाब करना है, कल तक जो है वो बेहिजाब घूम रही थी, आज सुबह आप कहते हैं भाई तुम बालिग हो गई हो तुम्हें जो है हिजाब करना है, इम्पॉसिबल, उसके लिए नामुमकिन ही जाप करना कि 8-9 साल जो है वो इस तरह गुजारे और एकदम से उसको कहे आप 1 साल जो है वो एक दिन में हिजाब कर ले। जिस लड़के ने जो है वो 15 साल नमाज नहीं पढ़ी, 15 साल बाद एकदम से आप कहते हैं उसको कि आज तुम बालिग हो गए, आज जो है तुम पे नमाज वाजिब है, तुम्हें नमाज पढ़ना। तो जिस तरह हमने देखा होगा बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं ड्रेसिंग में, खाने पीने में, बोलने में, नकल उतारते हैं, मसाला आपने देखा होगा आपकी गैर मौजूदगी में, टीचर्स की नकलें उतारते हैं उनकी गैर मौजूदगी में। तो जब वो कॉपी करते हैं, देखो अपने बच्चा जो है 12-13 साल का होता है लेकिन हाथ में गाड़ी होती है, वो चाबी होती है, गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट कर रहा होता है, कभी स्कूटर किक मार रहा होता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, बाबा के कपड़े पहनने की कोशिश करता है, और छोटी बच्ची भी जो है वो लड़की भी जो है वो माँ की नकल उतारती है, कभी जो है वो चमचा का व्हील लेके किचन में चली जाती है, कभी मेकअप सामान निकाल के मेकअप करना शुरू कर देती है। तो आप बच्चों को बताएंगे देखिए बेटा आपको बड़ा बनने की अगर जस्तुजू है, दिलचस्पी है, तो आप उन जिम्मेदारियों को अपनाना शुरू करें जो आपके माँ बाप अदा कर रहे हैं। आप नमाज रोजों को अंजाम देना शुरू करें जो आपके फर्ज तो नहीं हुए, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें तकवियत देगा। और आदत डलते डलते डलती है। जब आप अभी से कोशिश करेंगे, जिस तरह इम्तहान होता है, ओ लेवल है, मैट्रिक का इम्तहान है, वही असल इम्तहान है जिसकी डिग्री जो है वो सर्टिफाइड होती है, ऑफिशियल होती है, CV में प्रेजेंट की जाती है। लेकिन इस ओ लेवल एग्जाम के लिए, मैट्रिक के एग्जाम के लिए मुकदमा कितना तवील होता है, 8 साल का मुकदमा होता है, बल्कि 8 साल का मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप किंडरगार्टन को मिला दे 10 साल मुकदमाती तौर पे आप पढ़ाई कर रहे होते, अपने आप को तैयार कर रहे होते। यानी अगर आप ओ लेवल का एग्जाम देने चाहें, 8 साल तक स्कूल ना जाए और 10 साल तक, या जैसे कहते हैं ना पढ़े 8 क्लासें और एकदम से जाके आप मुझे एग्जाम देने, तो कोई आपको रोकेगा नहीं। तो इसी तरह बच्चों को ये कहें कि आप जो है अभी बालिग तो नहीं हुए, लेकिन अगर आपने ये समझा कि मैं 15 साल बाद या 9 साल बाद फौरन जिम्मेदारी को उठा लूंगा या उठा लूंगी, तो ये आपकी भूल है। आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है जो आपके ऊपर वाजिब होने जा रही है। इमाम रोजा शब कैसे गुजारते थे, इमाम सज्जाद के हवाले से उनकी कनीज से किसी ने पूछा कि तुम्हारे इमाम कैसे, जब कनीज ने यह पूछा था कि मैं मुख्तसर बताऊँ तफसील से, तो पूछने वाले ने कहा कि इख्तसार से बताओ। उसने क्या कहा था कि रात में मैंने बिस्तर नहीं लगाया और दिन में कभी दस्तर नहीं लगाया, यानी रात में सोई नहीं और दिन में खाया पिया नहीं, उन्होंने कुछ रोजा रखा हमेशा। तो इमाम फकत ये काम उस वक्त नहीं किया करते थे कि जब वो घरों में हुआ करते थे, जिस तरह हम होते हैं अपने घरों में, और थोड़ी सी कोई तकलीफ हुई तो फौरन हमारे सारे रूटीन डिस्टर्ब हो जाते। जब जिंदान में हुआ करते थे उस वक्त भी उनका रूटीन वही हुआ करता था, हालांकि तकलीफ के मामले में बहुत सारी चीजें साबित हो जाती है सफर में, मसलन नमाज साखित हो जाती है, अल्लाह ताला बोझ नहीं डालता, अल्लाह ताला कहता है कोई मुसीबत कोई तकलीफ हो तो अपने बोझ को कम कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी जिंदान में वो रात भर इबादत करते थे और दिन भर रोजे रखते थे। कहते हैं कि मुहतदी ने जो बादशाह था उसने सालेह बिन वसैफ, मतलब एक बहुत जालिम शख्स था जिसकी जेल थी, जिसे कहते हैं एक टॉर्चर सेल था जिसके पास, उसको दिया कि तुम इनको रखो और इनको अजियतें दो जितनी दे सकते हो। फिर सालेह बिन वसैफ ने उस जेल के सबसे जालिम शख्स जल्लाद का जो इंतखाब किया वो था अली बिन यारमिश, तो तुम इमाम को जो है जितनी तकलीफ दे सकते हो दो। कुछ अरसे बाद मेहतदी ने आके पूछा कि भाई उस कैदी का क्या हाल है जो मैंने तुम्हें दिया था, तो अली बिन यारमिश जो है पता चला कि वो खुद बड़ा मुत्तकी परहेज़गार आदमी बन गया। क्यों? कहने लगे मैं ऐसे शख्स को किस तरह तकलीफ दे सकते हैं कि जो दिन भर रोजे रखता है और हमारी इबादत करता है। यानी जल्लाद से जल्लाद सिफत शख्स दुश्मन इमाम, जिनका कोई ताल्लुक नहीं इल्म से, जिनका कोई ताल्लुक नहीं तकवे से, जिनका कोई ताल्लुक नहीं मजहबी अहले बैत से, जब वो इमाम को देखते थे इबादत करते हुए या जिसे कहते हैं कि रोजा रखते हुए, वो खुद भी जो है वो मोम होने से अपने आपको नहीं रोक सकते। नमाज के हवाले से, इमाम अली के हवाले से आपको अच्छी तरह वो वाकया याद है कि जंग सफीन में जब वो बार बार अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाते तो इब्ने अब्बास ने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? उनका सूरज देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हैं? कहले इसलिए ये देखना चाहता हूं कि नमाज जहर का वक्त हुआ या नहीं हुआ। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि आप इस हालत जंग में नमाज की फिक्र कर रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया मैं इसी नमाज के लिए तो जंग कर रहा हूं। तो फकत नमाज जंग नहीं, हर जगह जब भी नमाज का वक्त आए बस समझ लीजिए जंग शुरू हो गई। आप TV पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जो है वो फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, आप जो है वो किसी को SMS कर रहे हैं, आप जिसे कहते हैं कोई खेल खेल रहे हैं, आप जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप मशगूल हैं और नमाज का वक्त आ जाता है, बस समझ लीजिए जंग शुरू हो गई। क्या जंग? शैतान की और आपकी, नफ्स की और आपकी, نفس کہے گا کہ نہیں پہلے یہ کام مکمل کرو پھر نماز پڑھو، شیطان کہے گا پہلے یہ کام مکمل کرو پھر نماز پڑھو، اور آپ کے دماغ جو رحمانی خیال آئے گا نہیں مجھے نماز پڑھنی چاہیے، فجر میں آپ سو رہے ہوں گے، اذان آپ کو اٹھائے گی خدا اور اس کا فرشتہ کہے گا تو نماز پڑھو، شیطان اس طرف پھونک مارے گا کہ نہیں تم جو ہے وہ سوتے رہو، تو بس یہ جنگ شروع ہو گئی، جس طرح جنگ صفین ہے اس طرح یہ بھی ایک جنگ شروع ہو گئی آپ کی، حق و باطل کی جنگ جسے کہتے شروع ہو گئی۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کچھ لکھ بھی رہے ہوں تو قلم ویسے ہی رکھ دیا کرتے تھے اور نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ اصحاب آئے، دیکھا امام کچھ لکھ رہے، لکھتے لکھتے نماز کا وقت ہوا، امام نے قلم رکھا اور چلے گئے، کہتے ہیں کہ قلم اپنی جگہ سے اٹھا اور حرکت میں آیا اور جو کچھ امام لکھ رہے تھے وہ جاری ہو گیا۔ اور جب امام واپس آئے تو قلم نے ان کی تحریر کو مکمل کیا، اور جہاں مکمل کیا امام نے اس سے آگے سے شروع کیا، یعنی امام نے اپنا کام خدا کے لیے چھوڑا اور خدا نے ان کا کام مکمل کر دیا۔ ہم یہی تو کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ ذرا یہ کام مکمل کر لیں، امی ذرا یہ میں پروگرام کمپلیٹ کر لوں، امی ذرا یہ صفحہ میں لکھ لوں، ذرا بس دو برتن رہ گئے جب میں یہ مکمل کر لوں۔ دیکھیے امام جب آئیں گے نا تو کم و بیش آدھے لوگ جو ہمیں نظر آتا ہے اسی وجہ سے جانے سے حاضر ہوں گے، کیوں امام ذرا سا ناشتہ کر لوں، امام ذرا سا چائے پی لوں، چائے نہیں پیتا ہوں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، اگر میں آپ کے ساتھ تلوار لے کے نکل گیا تو دن بھر تو مجھے معلوم ہے واپس تو آنا نہیں ہے، یقیناً فتح ملے گی اور میں کہیں نہ کہیں گورنر بن جاؤں گا، لیکن ایک دن میں تو نہیں ہوگا، اس وقت تک میری جو ہے سر میں درد ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا جسے کہتے ہیں کہ ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، یا مثلاً ہزار بہانے جسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ جو کام نہیں بھی کرنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر سکون سے جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تحقیر ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیگریڈ کرنا ہے نماز کو، یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی رشتے دار آئے گھر پہ، آپ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بیٹے کو مجھے بیٹا ان کو بٹھاؤ ٹرنگ میں، میں آتا ہوں میں آتی ہوں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جائے آپ ملنے، آپ بتائیں ان کی کیا حالت ہوگی، دیکھتے ہی وہ پیر پٹک کے نکل جائیں گے کہ آدھے گھنٹے سے ہم نے بٹھایا ہوا ہے، کوئی گورنر ہے آپ کے جو آپ ہمیں بٹھایا ہوا ہے، یا ایک گھنٹے بعد جائیں دو گھنٹے بعد، بس جب نماز کا وقت ہوتا ہے بس آپ خیال کریں کہ گھر میں آپ کے آپ کی بیٹھا ہوا ہے، کتنی دیر بعد جائیں گے آپ پاگلوں کی طرح، جسے کہتے ہیں اگر آپ کا عزیز قریب رشتہ داروں کو تو فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے، آپ خود جائیں گے دروازہ کھولیں گے اور بٹھائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اچھا ہم نے یہ واقعہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو سنایا تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اب میں جو ہوں اپنا ہوم ورک اس وقت شروع کروں گی کہ جب نماز کا وقت ہونے والا ہوگا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اللہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اس نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا، دوسرے دن اس نے ہمیں بتایا سر آپ نے تو کہا تھا کہ قلم چل جائے گا اور کام مکمل ہو جائے گا، میں نے تو نماز پڑھی۔ اچھا ماشاء اللہ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ بھائی سر نے کہا ہے کہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک گھنٹے نماز پڑھو تاکہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے، جغرافی کا، سوشل اسٹڈیز کا اور انگلش کا۔ تو اب وہ اسٹوڈنٹ نے تو ہمیں پریشانی میں ڈال دیا کہ بھائی ان کو کیا، ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب آپ کی نماز امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز کی طرح ہو جائے گی تو بس اسی دن آپ کا ہوم ورک بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، اور آپ لوگوں کی زندگیوں کے تجربے بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مکمل نہ ہو کم از کم کام آسان ضرور ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ بھائی آپ فلاں کو فون کرنا ہے، ارے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نہیں اگر میں بھول گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، اگر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو پھر میں بھول جاؤں گی، آپ نے فون کیا تو ان کی بیٹی نے اٹھایا وہ نماز پڑھ رہی ہے، آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے آپ چھوڑ دیں تو پہلے اسی کام میں وہ مصروف ہے۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے چھوڑا ہوتا ہے پتہ چلا کہ وہی جو ہے کام جو دوسرا بھی کر رہا ہو، تو پھر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو نعوذ باللہ مطلب یہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی اللہ کو عزت دیں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا معاشرے میں، اور اللہ کو نعوذ باللہ آپ ڈیگریڈ کریں گی بے عزت کریں گی۔ ڈیلے کرنا بے عزت کرنا تو ہے، کسی کو کھڑے رکھنا اور انتظار کروانا بغیر کسی وجہ کے بے عزت کرنے کے مترادف ہے، تو اس میں پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرے گا کہ آپ کو بھی معاشرے میں ذلیل و خوار کرے گا۔ افو درگزر کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، لیکن شاید ایک وقفے کا وقت ہے، پانچ منٹ کا انشاءاللہ وقفہ، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افو درگزر کے حوالے سے یقیناً بہت سارے واقعات اور دیگر آئمہ سے بھی منقول ہیں، لیکن یہاں ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے اور اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ امام کے صحابیوں میں ایک شخص تھا احمد بن اسحاق اور سید حسین بن حسن. اچھا سید حسین بن حسن جو تھا یہ ایک فاسق و فاجر شخص تھے, تھا تو نہیں کہنا چاہیے, تھے, حتیٰ کہ شراب بھی پیا کرتے تھے. ایک دفعہ سید حسین بن حسن احمد بن اسحاق کے پاس آئے جو اس زمانے میں کسی بڑی پوسٹ پہ تھے حکومت کی, اور غالباً اوقاف جو ہوتا ہے حکومت کا محکمہ اوقاف, اس کی پوسٹ پہ تھے. اب سید حسین اس زمانے میں شراب پیا کرتے تھے, فاسق و فاجر تھے, تو ظاہر سی بات ہے احمد بن اسحاق نے منع کر دیا سختی سے کہ میں نہیں ملنا چاہتا. اچھا اتفاق سے سید, جیسے کہ نام ظاہر ہے حسین بن حسن جو ہے سید خاندان سے تھے اور چھٹے امام سے ان کا نسل جا کے نسب ملتا تھا. جب احمد بن اسحاق نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ حج پہ گئے اور امام سے ملنے مدینے گئے, تو خود سامرہ آئے, تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق سے ملنے سے انکار کر دیا. تو وہ جب بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ آپ کم از کم میرا وہ تو بتائیں جرم, تو امام نے کہا کہ تم نے سید حسین بن حسن سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, اس لیے ہم نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا. تو اس شخص نے کہا کہ امام آپ کو معلوم ہے وہ شخص شراب پیتا ہے. امام نے کیا کہا, کچھ بھی ہو وہ ہے تو ہمارے خاندان سے, یعنی سید سادات, اور یقیناً یہ ہے احادیث میں موجود ہے یہ بات کہ اگر سید یا سادات کوئی گناہ بھی کرے تو بھی ان کا احترام کرو کہ وہ ہمارے خاندان سے, کم از کم اس حوالے سے. یہ نہیں کہ آپ بھی گناہ کرنے لگ جائیں گے, جب سید گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی گناہ کریں, یہ نہیں, کہ کم از کم وہ ہمارے خاندان سے, تو کم از کم اس بات پر احترام کرو. ایسا ہوتا ہے جو اچھے خاندان کا ہوتا ہے لوگ عموماً اس کا احترام کرتے ہیں, تو پھر سید ہونے کے حوالے سے تو ماشاء اللہ ضرور احترام ہونا چاہیے. بہرحال تو جب امام کے نام سے سرزنش سنی تو جو احمد بن اسحاق تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور اس کا اکرام کروں گا, اور فوراً گئے اپنے گھر اور سب سے پہلے جو ہے وہ سید حسین بن حسن کے گھر گئے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس کو گلے لگایا اور اسے معافی مانگی. تو سید حسین نے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے, تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو اور کیا ہو گیا؟ احمد بن اسحاق نے کہا کہ میں ابھی امام سے مل کے آ رہا ہوں اور امام نے مجھے کہا کہ تم اسے معافی مانگو. ٹھیک ہے تم شراب پیتے ہو لیکن ہو تو تم امام کی حسب نسب سے کہ امام کے خاندان سے. یہ سننا تھا کہ حسین بن حسن جو ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے کہ دیکھے امام مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں اور میں کیا کام کر رہا ہوں, کہ یعنی ایک شرابی شخص شراب بھی پی رہا ہے لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سید کے خاندان سے تعلق ہونے کی بنا پر احترام کرو. کہتے ہیں فوراً گھر آئے, سارے شراب کے جو ہے پیالے اور ساغر و مینا تمام توڑ ڈالے, اور اس وقت سے جسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے مسجد میں معتکف ہو گئے, پوری زندگی جو ہے وہ امامت میں گزار دی, اور جسے کہتے ہیں کہ اسی حالت میں ان کی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. اچھا یہ آپ نے واقعہ امام علی حوالے کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ ایک دن شاید غالباً مالک اشتر تھے یا کوئی اور تھا کہ انہوں نے امام علی سے پوچھا کہ آپ نے کتنے قتل کیے. امام نے کہا 199, اور اس نے کہا بس ایک کم ہو گیا رہ گیا. تو امام نے کہا کیا مطلب؟ کہ میں نے 99 قتل کیا, آپ نے 100, بس ایک کو قتل کر دیتا میں آپ کے برابر ہو جاتا. امام نے کہا کہ میں نسلوں کو دیکھتا ہوں کہ آخر تک قیامت تک کوئی شخص تو نہیں گزرے گا اس خاندان میں کوئی مومن یا متقی پرہیزگار, جب مجھے مکمل اطمینان ہو جاتا تب میں قتل کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم تھا اس زمانے میں کہ کچھ افراد ایسے تھے جو رسول اللہ کے دشمن تھے, تو رشتے داریاں کیوں کی؟ ارے بھائی انہیں لوگوں کے خاندان سے تو محمد بن ابوبکر جیسے لوگ جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے. تو بہت سارے لوگ جیسے معاویہ ابن یزید, یزید کا بیٹا معاویہ خود بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا, تو اتنے جسے کہتے ہیں پرہیزگار ہوئے اور اتنا جو ہے گناہوں سے کنارہ کشی کی کہ اس کے بعد معتکف ہو گئے سید حسین بن حسن, اور آخر میں بی بی معصومہ قم کے روزے کے سامنے جسے ان کی تدفین عمل میں آئی. اور بی بی معصومہ قم کا روزہ اور اس کے معجزات, اس کے کرامات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک کرامت, ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا. لارن بوتھ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا, یہ ٹونی بلیئر کی سالی ہے, اور یہ جب مسلمان ہوئی, جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں مسلمان ہوئی, تو کہہ لیں کہ جب میں بی بی معصومہ قم کے مزار پہ گئی تو مجھے ایک عجیب روحانیت محسوس ہوئی, اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے, مذہب اہل بیت ہی حق مذہب ہے, اور اس کے بعد سے میں مسلمان ہو گیا. اور ایک دم سے ان کی کایا پلٹی, اپنی کتابیں لکھی اور تقاریر کی اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا. تو دیکھیے حسین बिन जो इमाम के साहबी थे हुसैन बिन हसन, उनको अल्लाह ताला ने फिर कितनी इज्जत तौकीर दी कि कहाँ उनको जो है वो दफन की जगह मिली और उसके बाद कैसी काया पलटी। तो बाज़ हम भी यही करते हैं, लोगों पे लेबल लगा देते हैं, तुम जो बेहिजाब हो तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम जो है वो फिल्में देखती हो तुम कभी ये नहीं छोड़ोगी, कम तुम जो है वो गाने सुनती हो तुम कभी ये नहीं छोड़ सकती, और आप अपने आप को बहुत जिसे कहते हैं कि वो समझते हैं कि बस हम तो पता नहीं क्या, और पता चलता है कि बाद में वही शख्स आपसे आगे निकल जाता है। भाई देखिए, आपने शायद मैराथन रेस देखी होगी, मैराथन रेस जो होती है उसमें जो सबसे आगे होता है शुरू में, क्या वो हमेशा सबसे आगे ही रहता है? आप जो फर्स्ट आता है उसको नोट करें, वो हो सकता है बहुत पीछे से निकल के आगे गया हो। तो जब दौड़ शुरू होती है हमें नहीं मालूम कौन आगे कौन पीछे, हमें ये देखना चाहिए कि आदमी के अख्तिताम कैसे हो। जब अल्लाह ताला जो है आपके गुनाहों को बख्श रहा है तो क्या आपके आसपास जो लोग हैं उनको नहीं बख्श सकता? और आप किस तरह कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ठीक है आप भाई जाबे नमाज पढ़ रहे, क्या आपने गुनाह नहीं किए? नंबर एक, अगर आपने गुनाह किए तो आप किस तरह कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई मेरे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए? हो सकता ना कि हो, आप उन गुनाहों को अपने सामने रखें। हो सकता है वो शख्स जो आपके सामने नजर आ रहा है गुनाहगार होगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी नेकी कर रहा हो, या हो सकता है खुद अपने गुनाहों पर नादिम हो और मुसलसल माफिया मांग रहा हो, तौबा कर रहा हूं अल्लाह ताला मुझे किसी तरह इससे निजात दे दे। तो हमें लोगों को हिकारत से, बल्कि मौला का हमें कॉल भी मिलता है कि लोगों से नफरत ना करो, उनके गुनाहों से नफरत करो। जब गुनाह से नफरत करेंगे तब आप लोगों के करीब होंगे, वरना तो देखा जाए तो हम भी इस काबिल नहीं है कि इमाम हमें मुंह लगाए अपनी महफिल में बिठाए। जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे रोज़ो शम हैं, वो भी इस काबिल नहीं है। हम हो सकता है दूसरों से बेहतर हों, लेकिन कई लोगों से जिसे कहते हैं कि बदतर हों, तो किसी को भी गुनाह की बुनियाद पर बदतर नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं। हाँ, जो शख्स अलल एलान गुनाह करता हो और अपने गुनाह पे बहुत ज़्यादा इतराता हो, फ़ख्र करता हो, ऐसे लोग यकीनन जिसे कहते हैं कि काबिल मुज़म्मत। अच्छा, हमारे आइमा के हवाले से बस यही समझा जाता था कि वो जो है इल्म के हवाले से मशगूल रहते हैं, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, इनको दुनिया का क्या पता। मसलन अगर इनके हाथ में तलवार दे दी जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, घोड़े पे बिठा दिया जाए तो आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जब बादशाह ने वक्त ये देख लिया करते थे कि इल्मी मैदान में तो हम आइम्मा को नहीं बिछाड़ सकते, तो चलो उनसे कोई ऐसा काम लिया जाए, उनको किसी ऐसी मुश्किल आजमाइश में डाला जाए जो अमूमन उनकी रूटीन का हिस्सा ना हो, रोज़ो शब में वो काम करते ही ना हो। तो एक घोड़ा था मुस्तईन के पास जो बहुत ज्यादा इसे कहते हैं कि बितका हुआ घोड़ा था, किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। किसी वजीर ने मशवरा दिया कि आप इमाम को कहें कि इसको सुधारे, इमाम इसको काबू में करे। काबू में कर लिया तो ठीक, अगर नहीं किया नाउज़ बिल्ला तो घोड़ा इनका काम तमाम कर देगा, नाउज़ बिल्ला। इमाम को बुलाया, इमाम ने कहा कि तुम खुद घोड़े पे बैठ जाओ और इंशाल्लाह ये घोड़ा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगा, आप बैठे। इमाम घोड़े पे बैठे, फिर इमाम ने जो है घोड़े को हकाया, घोड़ा आगे पीछे गया, दौड़ाया, हरकत दी, कुछ भी घोड़े ने नहीं कहा, जैसे बरसों से उनके साथ रहा हो। वो बड़े परेशान हुए बादशाह उसके वजीर। इमाम ने कहा कोई और काम? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ख्याल में ये घोड़ा आप खुद ले जाएं, क्योंकि हमारे घोड़ा ये हमारे किसी काम करेंगे। इमाम जो है वो जिसे कहते हैं कि घोड़ा अपने साथ ले गए। तो ये जो इमाम का एक मैसेज है इसमें कि देखो हैवान तक मेरे ताबे हैं, तुम इंसान हो कि मेरी इताअत नहीं करते। इसी तरह एक दफा इमाम को जब जिंदान में रखा गया था तो शेर छोड़ दिए गए थे इनके खैदखाने में, कि वो इमाम का काम तमाम करते। कहते हैं कि तमाम शेर इमाम की कदम बोसी करने लगे, उनके कदम चूमने लगे, उन पर क्या हमला करते। दरिंदे, हैवान, चरिंद परिंद इमाम के तात गुजार, ये इंसान है जो इमाम को नहीं पहचानता या पहचानता है तो हवाए नफ्स की वजह से इमाम की इताअत करने से गुरेज करता। तभी भी यकाना देखिए, इमाम के पास माशाअल्लाह हर किस्म की खसूसियत, हर किस्म का खजाना मौजूद है। ये हम हैं जो बाज़ शर्माते हैं, घबराते हैं, इमाम से अपनी मुश्किल बताते हैं, हाजत बताते हैं। एक दफ़ा एक सहाबी को बुखार हुआ, और वो बुखार कौन सा था, चौथवें दिन का बुखार, यानी हर चौथे दिन होता था, इसको हम क्यू फीवर कहते हैं, क्वारंटाइन फीवर। उसकी बहुत सारी वजूहत अलामत होती हैं। तो इमाम ने उसको कहा कि तुम इस आयत को ताबीज़ बनाकर गले में डाल दो, इंशाल्लाह इसका बुखार रफा हो जाएगा। या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए नार, ए आग, ठंडी होकर इब्राहिम के लिए सलामती का बाइस बन जा। और जब उस शख्स ने ये किया तो उसका जो है वो बुखार उतर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने टीवी में एक खबर आई, वो किसी ने हमें भेजी उसकी क्लिप के कराची में गालिबन पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में सूरह रहमान की आईसीयू में तिलावत की जा रही है और आईसीयू में मौजूद एडमिट लोगों को सूरह रहमान सुनाई जा रही है और ये रिकॉर्ड पे बात आ रही है हॉस्पिटल के सूरह रहमान के सुनने से लोगों की जो है तबीयत में बड़ा इजाफा हो रहा है। अच्छा ये मैं भी बता दूं कि खुद मगरिब में म्यूजिक के जरिए लोगों को सेहतयाब किया जाता है यानी उनका मूड ठीक किया जाता है नाउज़ुबिल्लाह। तो मुझे ये बता दीजिए जो कुरान की किरण सुन ले जिसे कहते हैं ना कि दिलो जान से यकसू होकर और खुलूस नीयत के साथ यकीन करें कि उसका दिल म्यूजिक में ना लगे। कहते हैं कि पानी की के गिरने से आबशारों से चरिंदों की परिंदों की जैसे कि चहचहाट से खुद जन्नत में ऐसी आवाजें पैदा होंगी कि मौसीकी से कहीं ज्यादा दिल लुभाने वाली होंगी। तो सूरह रहमान और खुद कुरान की सूरह की तिलावत इंसान की तबीयत को यकीनन हल्का कर देती है। तो अगर आपको सहारा लेना है तो ऐसी आवाजों का सहारा लें कि जो न सिर्फ जायज है बल्कि बाइस सवाब भी है। इमाम वक्तन फवक्तन जो लोग सवालात पूछा करते थे उनमें आयात कुरान की तफासीर भी शामिल होती थी और इस कसरत से इमाम ने तफासीर की तशरीह की है, आयात की तफासीर बयान की है कि लोगों ने बाकायदा उनको जमा करके किताब बना ली और उस किताब का नाम मशहूर हो गया तफसीर अस्करी का तफसीर इमाम हसन अस्करी। हालांकि खुद उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, तफसीर नहीं लिखी, ना ही अपने असहाब को डिक्टेट करवाई, इमला करवाई। लोगों ने उनकी बयान करदा तफासीर को जमा करके, तशरीहात को जमा करके खुद एक किताब बना डाली, उसका नाम तफसीर इमाम हसन अस्करी, अलग से कोई तफसीर नहीं है। और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। हदीस तकलान यही कहती है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक मेरे अहले बैत, क्योंकि किताबुल्लाह कभी भी अहले बैत के बगैर समझ में नहीं आ सकती। फसलू अहले जिक्र, पूछ लो अहले जिक्र से, कौन अहले जिक्र, यानी अहले बैत। यहीं से नफी कयास की जिसे दलील पैदा होती है कि इंसान को कुरान की तशरीह करते हुए अपने तई कोई बात या मतलब अखज नहीं करना चाहिए। आजकल एक फैशन आम होता जा रहा है लोगों में एक अहम तवज्जो कि भाई अगर आप अरबी सीख लें तो बस आप कुरान खुद समझ लेंगे। अगर कुरान का समझना अरबी बोलने और समझने पर मौकूफ होता तो अरब ममालिक में तमाम अफराद मुफस्सिर कुरान होते। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो क्या वो मेडिकल बुक्स पढ़कर डॉक्टर बन सकता है? यकीनन नहीं। तो फकत अरबी नहीं, अरबी के अलावा भी बहुत सारे उलूम हैं जो कुरान से मुताल्लिक, उनको समझ कर फिर कहीं जाकर आप कुरान की आयात को समझने के काबिल होते। अगर आपको कुरान समझना है तो अहले बैत को सामने रखते हुए, बिल्कुल ऐसे ही है किसी किताब को पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, मदरसे आना होता है, इसी तरह कुरान को समझने के लिए भी आपको उस्ताद की जरूरत है और वो उस्ताद है अहले बैत। अहले बैत की तशरीहात, तौजीहात और तफासीर के बगैर कुरान की आयत को समझना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो किसी गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कुरान एक होने के बावजूद आप मुसलमानों में 73 फिरके देखेंगे। और यही वजह है कि जब रसूल अल्लाह ने कहा था कि कुरान अहले बैत या अली के साथ है और अली कुरान के साथ है और ये उस वक्त तक जुदा नहीं होंगी जब तक हौसे कौसर पे मुझसे मुलाकात ना कर ले, यानी हमारे अहले बैत खुद मुहाफिज़ कुरान है, मुहाफिज़ इस्लाम है। इसहाक बिन कुंदी एक फलसफी था इराक का कि जिसने कुरान में नाउज़ुबिल्लाह गलतियां निकालने की जिसारत की और ये कहा कि कुरान में तनाकुज़ात है यानी कॉन्ट्रडिक्शंस है, एक आयत कुछ कह रही है एक आयत कुछ कह रही है। तो उसने जमा किया उन आयात को कि जिनके मफहूम बज़ाहिर हकीकत में नहीं बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ जाते थे। उसने कहा मैं किताब लिखूंगा और बतलाऊंगा मुसलमानों को कि ये किताब तुम्हारी गलतियों पर मुश्तमिल है। इमाम के सहाबी थे, इमाम ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा, अच्छा वो सहाबी इसहाक बिन कुंदी का भी शागिर्द था क्योंकि फलसफे का बहुत बड़ा उस्ताद था उस जमाने में। तो इमाम ने कहा कि तुम अपने उस्ताद को मना क्यों नहीं करते कि वो अपनी सरकस से बाज आ जाए। शाहिद ने कहा कि मेरे पास इतना इल्म कहाँ कि मैं अपने उस्ताद को दलील के जरिए कायल कर सकूँ कि तुम काम कर रहे हो वो गलत है। इमाम ने कहा तुम मुझसे फकत ये कहो कि अगर साहिब किताब यानी खुदाबंद ताला खुद तुम्हारे सामने आकर ये कहे कि जो मतलब तुमने इस आयत का निकाला है वो ये नहीं ये है दूसरा कोई मतलब है तो तुम यकीन कर लोगे? अगर वो कहे कि नहीं तो फिर उससे कहना कि फिर तुम ये कैसे कह सकते हो दावे से कि जो कुछ तुमने समझा है वो सब कुछ सही है तुम्हारे नजदीक। वो ये जवाब लेकर अपने उस्ताद इसहाक बिन कुंती के पास गया और बिल्कुल इसी तरह सवालात को उसके सामने रखा। और जब ये पूछा कि अगर साहिब किताब यानी खुदा बंदे मुताल तुम्हारे सामने आ जाए और ये कहे कि जो कुछ तुमने समझा है वो गलत है बल्कि ये है जो मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने किताब लिखी है, तो इसहाक बिन कुंती ने कहा यह बात तो है, खुदावंद तआल खुद जो है वो साहिब किताब है, अगर वो खुद कहे कि ये मतलब है ये नहीं है, जैसे शायर होता है शेर लिखता है, अब एक एक शेर के आप चार चार मतलब निकालते हैं, इम्तिहान में लिख के भी आते हैं, तो बाद में पांचवा मतलब भी लिख देते हैं कि मेरा भी जो है मैं जो समझा उस शेर से वो ये है, आप लिख सकते हैं, लेकिन शायर बेहतर तौर पर जानता है कि इस शेर का क्या मफहूम है। तो इसहाक बिन कुंती ने कहा यह बात तो ठीक है, अगर साहिब किताब खुद कह दे कि भाई ये मतलब है तो मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद लिखी है, उसके जहन में क्या था लिखते हुए मैं क्या कह सकता हूं। फिर इसहाक बिन कुंती ने कहा यह बताओ ये जवाब तुम्हारे जहन में आया कैसे। तो उसने कहा कि पहले तो उसने बहुत छुपाया, नहीं यकीनन किसी और ने तुम्हें यह बात बताई। उसने फिर इमाम का नाम लिया, उसने कहा यकीनन इमाम ही मेरी बात का जवाब दे सकते। उसके बाद उसने अपनी किताब को जला डाला। तो ये हकीकत है कि कुरान को समझने के लिए जब तक मजहब अहले बैत का खुद अहले बैत का सहारा ना लिया जाए तो इंसान फितनों में पड़ जाता है। आप ने गालिबन ये सुना होगा कि हॉलैंड में एक मूवी बनी थी फितना, FITNA, इतनी खतरनाक इतनी फितना परवर मूवी थी कि उसको अमेरिका में उस जमाने में बैन कर दिया था। अब पता नहीं वो अब क्या, तो इंटरनेट का जमाना है, बैन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जब ये मूवी बनी तो दो तीन लोगों ने मिलकर उसको बनाया, उस पर रिसर्च की, कुरान को पढ़ा और उसमें से बिल्कुल इसहाक बिन कुंती की तरह आयात निकाली और इस मूवी में पेश की कि देखें कुरान में कितनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो उसमें एक शख्स था प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं अर्नोल्ड वैन डोर्न, जिसने कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी रखा कि चलो इस मूवी का फितना पार्ट टू पार्ट थ्री भी बनाऊंगा। और कहते हैं जब उसने कुरान बहुत दिल भर के पढ़ा तो जाहिर सी बात है आदमी जब किसी बहस में जाता है और खूब दिल लगा के और सोच समझ के पढ़ता है तो फिर हिदायत मिल जाती है। कहते हैं उसको हिदायत मिल गई और वो मुसलमान हो गया, यानी कुरान के खिलाफ मूवी बनाने वाला मुसलमान हो गया। और फिर उसने जाके बाकायदा हज भी किया और बताया कि जो कुछ मैंने समझा था वो गलत समझा था, असल मतलब ये है। तो वही बात है, अगर इंसान जो है वो खुलूस के साथ कुरान को पढ़ेगा तब उसको जाके असल मफहूम से आगाही होगी, वरना हर चीज जो बाहर अच्छी नजर आती है वो फितना है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। वो जो एक शेर पढ़ा जाता है ना कि क्या जुल्म हुआ, पढ़ेगा कौन मुझे याद नहीं आ रहा मुकम्मल, ये भी क्या जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, ये भी ये क्या जुल्म हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, पतले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। वही कहते थे ना कि भाई जल्दी कतल करो इमाम हुसैन को, हमारी नमाज कजा हो रही है। नाउज़ बिल्ला, नमाज भी पढ़ते थे नारे तकबीर भी लगा। अच्छा आजकल भी यही इस किस्म के लोग जिसे कहते हैं तकफीरी मौजूद हैं, दाढ़ियां होती हैं, नारे तकबीर लगा रहे होते हैं और जिसे कहते हैं कि अपने ही जैसे मुसलमानों को भी शहीद कर रहे होते हैं, इमाम बारगाहों में धमाके कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि हम जो है वो बस सीधे जन्नत में चले जाएंगे। एक तकफीरी को किसी ने ख्वाब में देखा, कह लेंगे कहाँ हो, कहेंगे पता नहीं मुझे लगता है मैं जन्नत से भी आगे निकल गया हूँ। इतना जोर का धमाका किया, इतना मतलब कहता मैं उससे भी मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब भाई हमें तो ये मालूम है कयामत कायम होने के बाद जन्नत ही एक आफियत है, उसके बाद जो भी जगह है वो जहन्नम है या उस जैसी है। तो शमशीर हो, नारा तकबीर हो, औलाद हो, जागीर हो, कुछ भी हो, अगर खुलूस नियत शामिल हाल नहीं होगी, और हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे अहले बैत की मोहब्बत विलायत अली मवद्दत अहले बैत शामिल हाल नहीं होगी तो वो फिर आपको दूर ले जाएगी चाहे आप कितने ही मुसलमान बनते फिरें। इस्लाम के मुहाफिज भी थे, फकत इस कुरान के मुहाफिज नहीं थे, यानी नित नए फितनों से बचाना भी ईमान का काम था। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ नबी को साहिब शरीयत कहा जाता है और इमाम को मुहाफिज शरीयत, साहिब इस्लाम और मुहाफिज इस्लाम। उस जमाने के बादशाह के दौर में जब बारिश नहीं होती तो लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे। एक जमाने में ऐसा हुआ कि बारिश ने होने का नाम नहीं लिया, तो ईसाई राहिब आए, उनमें से एक ईसाई राहिब ने हाथ उठा के दुआ की जब दुआ की तो बारिश हो गई। अच्छा दूसरी मरतबा फिर ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई बारिश के मौसम में, फिर उसी ईसाई राहिब को बुलाया गया, उसने हाथ उठा के दुआ की, फिर बारिश हो गई, तो लोग जो है ईसाइयत की तरफ माइल होना शुरू हो गए। अच्छा बादशाह के वजीरों ने बादशाह को एक कान में डाला कि अगर इस तरह लोग ईसाइयत इख्तियार करते रहे तो फिर तमाम मुल्क इस्लाम छोड़ बैठेगा और फिर तुम्हारे तख्त पर तुम्हारी जगह कोई ईसाई नजर आएगा। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, क्या करे। अब जाहिर सी बात है कि दीन को दुनिया को बचाने वाला हमारा इमाम ही है, इमाम को जिंदान से बुलाया गया भी आप इसका मसले का हल हमें दें। इमाम ने कहा कि जब ये राहिब दुआ करे तो मुझे इसके पास ले जाना। राहिब ने जब दुआ की तो इमाम ने गौर से उसके हाथों की तरफ देखा कि कुछ छुपा रहा है। इमाम ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। तो बड़ी मुश्किल से उसने जाहिर किया, पता चला कि वो एक हड्डी थी। इमाम ने कहा कि हड्डी मुझे दो और उसके बाद दुआ करो। राहिब ने ऐसे ही किया तो फिर बारिश नहीं हुई। फिर इमाम ने उसका झूठ लोगों पर आश्कार किया और ये कहा कि ये दरअसल एक पैगंबर की हड्डी है जिसके वसीले से ये दुआ मांगता है और उसकी दुआ कबूल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बक्कार बल्कि लादीन बेदीन शख्स भी हो लेकिन किसी ऐसे शख्स के वसीले से दुआ मांगे तो जो खुदा को महबूब हो तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता। खुद कराची में और दूसरी जगहों में भी गालिबन मार्च और अक्टूबर के महीने में ईसाई अफराद आते हैं बाकायदा यहाँ पे YMCA ग्राउंड और मुख्तलिफ ग्राउंड पे उनका जो है वो जुलूस जलसा होता है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में ये जो कादर आजम का मज़ार है इसके अपोजिट में इनका वो हुआ था जलसा, बिल्कुल यही होता है कि बाकायदा आके वो जो है वो दुआ मांगते हैं और बताया जाता है कि बहुत सारे फालिज ज़्यादा उनका फालिज ख़त्म हो गया, नाबीना बीना हो गए। बहरहाल ये मैंने पोस्टर्स बहरहाल जगह जगहों पर लिखे देखे गए। अगर ऐसा होता है तो हमारे अकीदे के मुताबिक यकीनन इसमें कोई वसीला जिसे कहते हैं कि अहले बैत का या कोई ऐसा वसीला कि जो शख्सियत अल्लाह को महबूब हो वो मौजूद होती है। खुद खलीफा दोयम कहते थे रसूलुल्लाह के बाद के इब्ने अब्बास को बुलाओ जब बारिश का मौसम होता था और बारिश नहीं होती थी। क्यों? वो कहते थे कि हम जब आपके जद जिंदा थे तो उनको वसीला बनाकर अल्लाह से बारिश की दुआ मांगते थे, अब आप उनकी औलादों में से हैं तो हम चाहते हैं कि आप ही को वसीला बनाएं। तो इस्लाम में भी वसीला है, कुरान में भी वसीले का तस्किरा है। वसीले से अगर कोई दुआ मांगी जाए तो न सिर्फ सही बल्कि गलत आदमी को भी खुदा से कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसी तरह लोग जो है इमाम को आजमाने के लिए इल्मी एतबार से नहीं कुछ ऐसे अंदाज से जिसे कहते हैं अपनाते थे जिसमें करामत का भी अमल दखल ना हो, कोई ऐसी टेक्निक कोई ऐसा हुनर जो किसी को आता हो या नायाब हो वो इमाम के सामने पेश करता था ताकि इमाम जो है जिच हो जाए और कहते भाई मुझे तो ये नहीं आता। तो एक शख्स ने बगैर रोशनाई के खत लिखा, गालिबन हमें नहीं मालूम, ये कन्फर्म आप कर लीजिएगा, प्याज के जूस अरक से अगर कुछ लिखा जाए तो वो नजर नहीं आता। बहरहाल हमने बचपन में सुना था ये, बहरहाल प्याज से वास्ता आप लोगों का ज्यादा रहता होगा आप देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी होती है स्याहियां कि जिनसे आप लिखें तो वो नजर नहीं आता जब तक आप उसको शमा की लौ आग के ऊपर रखे ना पड़े। उस शख्स ने लिखा और इमाम को भेज दिया वो खत कि इमाम इस खत का जवाब दे, अब उस पर कुछ नजर तो आता नहीं था। इमाम ने उस खत का जवाब दिया और उसके बाद उस शख्स के वालिदैन का भी नाम लिखा नीचे कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे वालिद वालिदा का नाम ये है और तुमने ये खत लिखा। वो बेचारा जैसे कहते हैं झुक के उसने इमाम पर ईमान ले आया कि इमाम जो है वाकई हर चीज पे मुकम्मल उबूर और दस्तखत रखते। बल्कि एक शख्स के ये वाकया दर्ज तो नहीं है, ये वाकया भी हमने पढ़ा था बिहारुल अनवार में मौजूद है कि एक दफा एक शख्स ने अजीब गरीब देखे तरीके होते हैं इमाम को आजमाने के। इमाम आए रहे थे टोपी पहने हुए थे, तो उस शख्स ने कहा कि उसने अपने दिल में कहा, मजहब अहले बैत का मानने वाला नहीं था, उसने अपने दिल में कहा कि अगर इमाम ने आते हुए मुझे देख कर अपनी टोपी सर से उतार ली तो मैं समझ जाऊंगा ये इमाम है। सिर्फ अपने दिल में सोचा, उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने दिल में सोचा। इमाम आ रहे थे अपने असहाब के साथ और वो शख्स बैठा हुआ था, इमाम को नहीं मानता, उसने कहा कि अगर बस इमाम आए और मुझे देखा और टोपी उतार ली तो मैं समझ जाऊंगा मेरे दिल की बात इनको पता चल गई और इमाम है। इमाम आए, उन्होंने मुस्कुरा के टोपी उतारी और फौरन जाके उसने हाथ चूमा। लोगों ने कहा खैरियत तो है तुम, एकदम से शिया कैसे हो गए, एकदम से इमाम की मान गए, बस मैंने अभी दिल में सोचा था फकत। और इमाम ने अपनी टोपी उतार दी सिर्फ मुझे बताने के लिए हम तुम्हारे दिलों का हाल तक जानते हैं। इसी तरह इमाम के एक साहबी थे अबू हाशिम, वो आपके पास आए। देखिए इमाम जो है क्या क्या करता था, क्या क्या नहीं था, امام ہمارے لیے دین بھی تھا، ہمارے لیے دنیا بھی تھا، ہمیں عقل بھی دیتا، ہمیں پیسے بھی دیتا، جیسے کہتے ہیں سب کچھ دیتا. تو ابو ہاشم آئے کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ قرض چڑھا ہوا ہے، تو آپ کچھ اگر کر دیں. تو امام نے جو ہے وہ ہاتھ لگایا یا جیسے کہتے ہیں اپنا تازیانہ کسی کو چھوا، کسی زمین کے کسی حصے کو، تو وہ پتھر جو ہے وہ سونا بن گیا. کہا کہ ابو ہاشم تم اٹھا لو، وہ اٹھا کے لے گئے. اور جب اس کو تولا، اس کو بیچا، ایگزیکٹلی ان کے قرض کے برابر رقم ملی ان کو. اچھا، پھر اسی وقت خیال آیا اسی دن کہ میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں، گرم کپڑے نہیں، لیکن امام سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اب قرض تو مانگ لیا، اب یہ چیز بھی مانگوں کیا؟ امام نے کہا ان کے کہنے سے پہلے، ابو ہاشم کہنے سے پہلے تازیانہ زمین پہ لگایا، کہا اٹھا لو. جب اٹھایا تو چاندی، جب اس کو جا کے بیچا اور جسے کہتے ہیں کہ اتنے ہی رقم ملی جتنی سردیوں کے کپڑے خریدنے کے لیے ضروری تھی. امام سے آگے امام کا شکریہ ادا کیا. امام نے کیا کہا؟ اے ابو ہاشم، ہم سے کچھ مانگنے میں تکلف نہ کیا کرو. اچھا، ہم بڑے تکلف سے کام لیتے کہ امام سے کیا کیا مانگے، صحت مانگے، امام سے دین مانگے، امام سے جنت مانگے، اب کیا مطلب بی سی کے پیسے بھی مانگے، عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے، یا اس کے کپڑے بھی مانگے، مطلب اس کے بھی پیسے مانگے. نہیں دیکھیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ اپنے ابو امی سے پیسے مانگتے نا، امی آئس کریم کھانے کا جی چاہ رہا ہے 25 روپے دے دیں، ارے 20 روپے تو پہلے دے، یعنی امی آئس کریم مہنگی ہو گئی 25 روپے کی، آپ مانگتے ہیں نا 5 روپے 10 روپے 50 روپے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نمائندوں سے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے، دنیا رکھی ہے. اور دیکھیں یہ بھی نعوذ باللہ ایک طرح کا تکبر ہے، اگر آپ یہ مانگوں گا تو کوئی بڑی چیز مانگوں گا، جنت مانگوں گا، یہ کیا چھوٹی موٹی چیز مانگنا؟ یعنی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ باقی چیزیں خود ٹیکل کر لیں گے، یعنی آپ اتنے اس قابل ہیں کہ دنیا میں زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کو خود سہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کون ایسا شخص ہے، بادشاہ نے وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے، جسے کہتے ہیں کہ ہر کام میری مرضی سے ہوگا. دعوت میں بھی بلایا جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا تگڑا نہیں تھا، تو حالانکہ بہت بڑے پریسیڈنٹ ہیں، اتنے بڑے، لیکن پھر بھی جو کھانا نہیں پسند آیا، تو کس نام کے، کس بات کے آپ بادشاہ پریسیڈنٹ کے، آپ کو اپنے مطلب کا کھانا تک نہیں ملتا. تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پوری ہوتی، آپ کچھ بھی طرف خان، اوباما سے بھی پوچھ لیں، اسامہ سے بھی پوچھ لیں، اوباما سے بھی پوچھ لیں، دونوں کہیں گے نہیں یار ہماری جو ہے وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. عبداللہ جو گزرا ہے اس سے بھی پوچھ، لیکن وہ بھی کہیں گے ہاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میری تمام خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور میں خود مینیج کر لوں گا، کوئی مینیج نہیں کر سکتا. یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اگر اپنے امام سے اور اپنے، ابھی ہم زیارت کے حوالے سے بتائے، ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ کارواں والے 4 دن سے ڈبل روٹی دے رہے ہیں، کھا کھا کے ہم تھک گئے، ہمیں روٹی چاہیے، روٹی ڈبل روٹی نہیں چاہیے، حالانکہ ڈبل تھی، کہہ گئے نہیں ہمیں روٹی چاہیے فقط. تو وہ ہمارے ساتھ گزرے کہیں سے، کہنے لگے کہ او ہو کیا خوبصورت، کتنی اچھی روٹی، کتنی اچھی خوشبو، بالکل کراچی والی خوشبو روٹی کی، چلو روٹی خریدتے. ہم نے کہا یہ شرم کرو، تم کربلا میں آ ہو، تمہیں اپنی خواہشات کی پڑی ہوئی ہے، چاہے روٹی کی خواہش کیوں نہ ہو. کہہ لیں گے ہاں یار یہ تو ہے. میں نے کہا، اب ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کی قسمت میں ہوگی، مل جائے گی، فکر نہ کریں. وہ جیسے ہی ہوٹل پہنچے 15 منٹ بعد دوپہر کے کھانے میں وہی روٹیاں موجود تھیں. تو یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہش پوری کرتا ہے. آپ جب جاتے ہیں نجف سے کربلا، تو آپ نے دیکھا ہوگا پیدل جاتے ہیں. اچھا، مجھے ایک صاحب واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ یقین کیجئے کہ وہاں جو مانگو مل جاتا ہے، سوجی کا حلوہ مانگو سوجی کا حلوہ ساتھ میں. ہم نے کہا کہ آپ سوجی کے حلوے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک دوست صاحب کیا کہہ رہے، یار یہاں پہ سب کچھ مل جائے گا، مچھلی بھی مل جائے گی، سوجی کا حلوہ بھی، لیکن مجھے میری کیڈبری چاکلیٹ کون دے گا؟ وہ 2 قدم چلے کیڈبری چاکلیٹ لے کے کوئی کھڑا ہوا. خیر میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا کسی چاکلیٹ کی، کٹ کیٹ بھی ہو سکتی ہے اور کوکونٹ بھی ہو سکتی ہے، میک فیئر بھی ہو سکتی ہے، کلیئر بھی ہو سکتی ہے، ساری چاکلیٹوں کے نام لے لیا ہم نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کسی چاکلیٹ کے حامی نہیں. تو سب کچھ مل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یقین کریں، اس کی بھی دعا مانگیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، تاکہ آپ مکمل طور پہ تواضع انقراض ساری کے مجسمے بن سکے. یہ امام ہم آپ کے سامنے بچے ہی تو ہیں، آپ کے بچے ہی ہیں، ہم چھوٹی بھی چیز ہوگی تو بھی ہم آگے آپ سے مانگیں گے. حدیث رسول میں آ گیا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے. تمہیں خریدنا تو ہوگا، تمہیں اس کو ریپیئر تو کرنا ہوگا، لیکن پہلے اللہ سے مانگو اور پھر اپنی کوششیں جسے کہتے ہیں وہ بھی جاری رکھو. تو اللہ سے مانگیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے مانگیں، بہرحال تمام لوگوں سے مانگنا ایک ہی چیز ہے. اسی طرح امام کی صحابی تھے، اچھا لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی چیٹر ہوا کرتے تھے، کرپٹ ہوا کرتے تھے. امام کے پاس آئے، کہیں گے امام کچھ مجھے 100 اشرفیہ دے دے، 100 دینار دے دے. امام نے کہا تمہارے گھر میں 200 اشرفیہ موجود ہیں آلریڈی، وہ کیوں استعمال کرتے؟ کہیں گے امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں، कि अशरफ अगर अशरफ मौजूद इमाम है आता क्यों आपके पास, नहीं है कोई भी नहीं है। कहने अच्छा अच्छी फिर नहीं होंगी तो तुम 100 अशरफिया 100 दिनार ले जाओ, लेकिन वो 200 अशरफिया तुम्हारी किसी काम की नहीं आएंगी, काम की नहीं होंगी। कहने इमाम को क्या पता मेरे पास क्या है कि नहीं। अच्छा उसी घर में दफीने में यानी जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, कभी मुसीबत मुश्किल पड़ेगी तो मैं उठा निकालूंगा। और जब मुश्किल पड़ी तो उसने खोल गड़ा खोदा तो पगवा से अशरफियाँ गायब। तो फिर किसी घर वालों ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने ये निकाल ली थी और हड़प कर लिया था। तो ये भी होता है बाज़ औक़ात आपके पास वसीला मौजूद होता है आप नहीं मांगते। उसे कहते ना कि एक शख्स नजफ में गया नजफ़ अशरफ, उसके बाद 50 का नोट था, वही धक्कम पेन में गिर गया। कह लेंगे मौला 85 ही रुपये थे वही गिर गए। कह लेंगे दरहम कर लिया 85 ही रुपये थे, 85 ही दरहम थे वो गिर गए। मैं उस वक्त तक आपको अपना मौला नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे 50 रुपये नहीं देंगे, मुझे तो चाहिए ये 50 रुपये। तो फिर एक मरतबा उसको धक्का लगा, वो नीचे गिरा, वो पता चला कि 50 रुपये नजर आ गए। तो फौरन उठा के रख लिए, मौला ये तो मेरे थे आप अपनी तरफ से दें, ये तो मेरे हैं, आप मैंने तो दुआ मांगी थी आप दें। उस बिल्ला ऐसे भी जिसे कहते हैं कि लोग, और लोग आप भी फायदा उठाएं, लेकिन जरा करप्शन से नहीं, चीटिंग वाले अंदाज से नहीं। अच्छा एक शख्स था वो गया मौला के मजार पे, कहने का मौला आपके गुम्बद में इतनी सारी ईंटें हैं एक ईंट दे दे मुझे। एक ईंट उसी वक्त गिरी नीचे, उठा के ले गया, कैसे जाने लगा लोगों ने पकड़ लिया, क्या लेके जा रहे हो। कहने ये मौला ने दिखा, कैसे मौला कैसी बात कर रहे हो तुम, बहुत बड़े तुम वली हो, मौला ने तुम्हें सोने की ईंट दे दी वो भी खुद गिर गई तुम्हारे कदम में। दूसरे दिन आया फिर उसने उसी, देखिए मांगने वाले भी मांगते हैं तो मिलता है, हम आप मांगते नहीं है ना इस तरह बच्चों की तरह दामन पकड़ के। उसने कहा मौला प्लीज मतलब मेहरबानी करके मुझे ईंट दे दे, ये लोग दे जाने नहीं देते लेकिन आप दे दिया, ये दफा मैं ले जाऊंगा किसी तरह छुपा उपा के। और ईंट गिरी उसे पकड़ी और फौरन भाग के जाने लगा, लोगों ने फिर पकड़ लिया उसको कि तुम फिर चुरा के लेके जा रहे हो। चुरा भी गए ऊपर से गिरी है, लोगों ने कहा नहीं हम नहीं मान सकते ये हरम की जो है वो अमानत है। तीसरे दिन आया ढीठ आदमी, फिर उसने दफा मांगी और फिर ईंट गिरी और फिर वो जाने लगा, लोग पकड़ के उस जमाने के मुश्तहिद के पास ले गए उसको। कहने देखे ये हरकतें कर रहा है, ये बहानेबाजी कर रहा है। उस मुश्तहिद ने खैर पूछा कितना तफसील से, उसने बताया बिल्कुल सच सच कि भाई ये मसला है, 3 मरतबा ख्वाब में आए, 3 मरतबा मैंने दुआ की उनको। और फिर मुश्तहिद ने कहा ठीक है इसको ये ले जाने दे दो, ये इसी के हिस्से की है, ये इसी का नसीब है। तो यकीन करें मौला इमाम खुदा अगर मांगने पर आए, हमें बस जैसे कहते हैं मांगने का अंदाज नहीं आता, हम तो जिसे कहते हैं कि देखा जाए थोड़े से बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, बेवकूफ़ है कि फ़कत जन्नत मांगते हैं, हमें दुनिया भी मांगनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दुनिया भी मांगे और जन्नत भी मांगे। क्योंकि बाद वक्त दुनिया ना होने की वजह से भी आदमी कुफर के करीब, फ़कर के बारे में कहा जाता है ना कि फ़कर जो है वो इंसान को कुफर के करीब ले जाता है। फ़कर अगर कोई शख्स होता तो मुझे कतल कर देता, मौला कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, जितनी दुनिया चाहे जितनी ख्वाहिश आप पूरी करना चाहें ज़रूर पूरी कीजिए, बस आपकी ख्वाहिश खुदा की मोहब्बत पर गालिब ना है, बस ये फिक्र। मौला फरमाते हैं ना कि आदमी को जिंदगी में दुनिया में इस तरह रहना चाहिए जैसे किश्ती पानी में, जब तक किश्ती पानी के ऊपर रहती है इंसान महफूज रहता है, जब पानी किश्ती के ऊपर आता है फिर इंसान डूब जाता है। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई है बिल्कुल, दुनिया समेटिए जमा कीजिए बहुत ज़्यादा जमा कीजिए, लेकिन उसमें पढ़ने से गुरेज कीजिए यानी आपके वाजिबात की अदायगी में, और खुदा की मोहब्बत में वो आड़ ना बने। मजमा बिन असलत और उम्मे खानम की एक खातून गुजरी है जो अजीब अंदाज से आइम्मा से उनकी इमामत के सबूत जो है वो तलब किया करती थी। और क्या था वो तरीका कि वो बहुत सारे संग्रेजे ले जाया करती थी और कहती थी कि आप इसके ऊपर अपनी मोहरे इमामत सब्त करो, और इमाम करते थे। एक दफ़ा उनका बेटा मजमा बिन असलत वो आया इमाम के साथ सामने, तो इमाम ने कहा कि हाँ तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह संग्रेजों पे मोहरे इमामत सब करवाती थी, और इमाम ने फिर जो है उसमें मोहरे इमामत जो है वो सब की। जब राहिब की दुआ और राहिब का किरदार एक्सपोज हुआ और इमाम ने मजमा आम में जिसमें ईसाई भी थे मुसलमान भी थे उसको बेनकाब किया, तो लोगों ने ये जाना कि असल मजहब क्या है और असल रहनुमा कौन है, और इमाम की तरफ रुजू किया। पहले लोग ईसाई होने थे, अब मजहब तशय्यो की तरफ रुख करने लगे, गैर शिया से शिया होने लगे। अब तो जिसे कहते हैं कि बादशाह वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ कि पहले लोग ईसाइयत की तरफ जा रहे थे, अब तशय्यो की तरफ जा रहे हैं, जो खुद हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ी रुकावट हमारे लिए। चुनांचा इमाम को जो है वो तहयात जिंदान में डाल दिया और उसी मलऊन ने मोतमिद ने आपको जहर देकर आपको शहीद कर दिया। और ये इमाम छठे इमाम का कौल भी है, वल्लाहु मा मिन्ना इल्ला मक्तूलुन शहीदुन, वल्ला हम मक्तूल शहीद होंगे, यानी तमाम इमाम जो है वो शहीद हुए हैं। तो ये इमाम की शहादत दी, ये इमाम का रोज़ा जिसमें आपको चार कब्रें मिल रही हैं, एक तो खुद इमाम की, एक उनके वालिद इमाम नकी अलैहिस्सलाम की, और एक हकीमा खातून जो कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम की बहन थी, और एक जो है वो नरजिस खातून जो इमाम की ज़ौजा मोहतरमा यानी इमाम ज़माना की वालिदा मोहतरमा। ये सामर्रा था। अच्छा, आप में से किसी को मैं तकलीफ दूंगा अगर वो कमरे में जाके इस कंप्यूटर का चार्जर ले आए, ताकि ये ऑफ होने वाला है, मैं भूल गया था, आप में से कोई मैनेजमेंट को जाके कह दे कि इसका चार्जर दे दे। एक दुरूद पढ़ दे महमूद भाई। सामर्रा जो है कई मरतबा जो है वो दहशतगर्दी का सामना कर चुका है, और कई मरतबा जो है उसके गुंबद और दीवारों को नुकसान पहुंच चुका है। अच्छा, एक ज़माना ऐसा भी आया है कि रोम अम्पायर, रोमन अम्पायर और दीगर हुकूमत ने जो है वो मदीना पे हमला किया, और रसूलुल्लाह का रोज़े मुबारक जो है वो तबाह किया इस अंदाज से कि उसकी दीवारें और आसपास की इमलाक को नुकसान पहुँचा। तो कुछ लोग जो के जिसे कहते हैं कि कम अकीदा रखते थे या कमज़ोर अकीदा रखते थे, वो जो है थोड़ा सा परेशान हुए और उनके अकीदे मुतजलजल होने लगे। तो अगर खबर मुबारक को नुकसान पहुँचे, इसका मतलब ये नहीं नाउज़ बिल्लाह साहिब रोज़े को भी नुकसान पहुँचाओ, ये ऐसा नहीं होता। तो वक्ती तौर पर, ज़ाहरी तौर पर अगर नुकसान देख लें और आपका ईमान मुतजलजल हो जाए, तो आपको अपनी ईमान की फिक्र होनी चाहिए। इसका इस्लाम की कमज़ोरी और आपके एतक़ाद के सही ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल 1905 में ये जो मौजूदा रोज़ा है वो बना था, और गाहे बगाहे इस पर अबल के अभी जो 8 रबीउल अव्वल गुजरी है उसमें भी जो है धमाका हुआ है, फायरिंग हुई है, और दो अफराद जो है वो शहीद भी हुए हैं। और अब हुकूमत वक्त और हरम की स्पेशल सिक्योरिटी बसेस और सिक्योरिटी गार्ड्स की सरकर्दगी में लोग जाते हैं, और वहाँ पर बहुत हुजूम होता है, जिस तरह अरबईन पर हुजूम होता है नजफ़ से लेकर करबला तक, उसी तरह 8 रबीउल अव्वल जो कि इमाम की शहादत का दिन है, उसमें बहुत सारी बसें जो है नजफ़ से और करबला से इमाम के रोज़े की तरफ जाते हैं और इमाम का जो है यौम शहादत वो मनाते हैं। जब इमाम की जिसे कहते हैं कि शहादत का वक्त आया, तो फितने जाफर कज़्ज़ाब जिसे कहते हैं पैदा हुआ। और जाफर कज़्ज़ाब वो शख्स था कि जो इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम का भाई था, और ये जो है जब उसने देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कोई औलाद तो है, लेकिन फ़कत वो 5 साल के थे इमाम ज़माना, तो उसने कहा कि मैं क्यों ना आगे बढ़ के दावा कर दूं और मैं इमाम बन जाऊं। ये 5 साल का बच्चा क्या इमामत का जिसे कहते हैं कि दावा करेगा या इमामत करेगा। तो बहुत कोशिश की इसने, बल्कि इमाम हसन अस्करी की नमाज जनाजा पढ़ने की भी कोशिश की। तो जैसे ही ये शख्स गया आगे नमाज पढ़ाने, चचा इमाम ज़माना के, तो इमाम ज़माना उसी वक्त, जो उस वक्त 5 साल के थे, नमूदवार हुए और उनका दामन पकड़ के उनको खींचा और ख़ुद नमाज जनाजा जिसे कहते हैं इमाम की पढ़ाई। अच्छा, जाफर कज़्ज़ाब कहने की वजह ही यही है कि हमारे इमाम जाफर सादिक भी गुजरे, और रसूलुल्लाह की हदीस है कि जब किसी से पूछा गया, रसूलुल्लाह की हदीस है ग़ालिबन या चौथे इमाम की हदीस है, जब उनसे पूछा गया कि इमाम जाफर सादिक को जाफर सादिक क्यों कहा जाता है, हमारे तो सभी सादिक हैं, सब सच्चे, तो इमाम ने कहा कि इनकी 5वीं पुछ से एक शख्स जाफर पैदा होगा जो कज़्ज़ाब होगा, उससे मुमय्यस करने के लिए जाफर सादिक कहा जाता है। और ये शख्स जो है वो शराबखोर था और इमाम की बहरहाल औलादों में से था, अहले बैत में से था, लेकिन बहरहाल इमाम ने इसका अंदिया दे दिया था कि अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं तो बिल्कुल पिसरे नूह की तरह है, यानी नूह के बेटे की तरह है। और इसी तरह हमें मिसाल मिलती है अबू लहब की भी, रसूल का चचा था, रसूल के चचा तो अबू तालिब भी थे, लेकिन बहरहाल ज़मीन आसमान में फ़र्क अबू तालिब और अबू लहब में। इसी तरह औलाद अहले बैत में ज़ाहिर सी बात है कि जाफर कज़्ज़ाब हो तो वो पिसरे नूह की मिसल कहलाएंगे। तो इसने इतनी अजीब मजे का है इस बात, इसने बाकायदा इमाम को ये ऑफर भी की, मैं 20,000 दीनार हर साल दिया करूंगा आपको, आप मुझे इमाम बना दें। तो बहरहाल दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे, और ये जो है हुक्मरानों की कुछ पनाही में भी ये काम हुआ करता था, और खुद अपने हवा नफ्स की जिसे कहते हैं कि उसमें भी शिकार रहते थे। लेकिन इमाम हमारे 11वें इमाम ने अपनी शहादत से पहले ये बता दिया था कि मेरी नमाज जनाजा जो पढ़ाए वो इमाम होगा। जो खतूत आते हैं जिनके मैं जवाबात लिखता हूँ, वो जो तलब करे कि वो खतूत कहाँ हैं जिसमें जवाबात मौजूद हैं, वो इमाम होगा। और जो थैली है जिसमें इतने सिक्के जो है इस तरह के हैं और इतने सिक्के जो हैं वो इस किस्म के हैं, तो ये तीन चीज़ें जो करें, नमाज जनाजा जो पढ़ाए, जो जवाबात खुदूत तलब करे और थैली का मुतालबा करे जिसमें कि फला मखसूस सिक्के मौजूद हैं, तो समझ लो वही इमाम ज़माना होंगे तुम्हारे वक्त के। तो 5 साल की उम्र में इमाम ज़माना एकदम से नमोदार हुए, नमाज जनाजा पढ़ाई इमाम हसन अस्करी की, जवाबात खुदूत का मुतालबा किया और उस थैली का मुतालबा किया जिसमें रकम मौजूद थी। और इस तरह लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जाफर कज़्ज़ाब एक काज़िब शख्स था और जिसने इमाम का गलत और झूठा दावा किया था, और असल इमाम इमाम ज़माना। अकवाल हकीमाना हमें आपके सामने पेश करने थे, चंद अकवाल हमने जमा किए थे, लेकिन अब वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह किसी और दस में इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने जो अकवाल ज़रनी और हकीमाना बातें हमें बतलाई थी, वो इंशाअल्लाह कभी और आपके सामने पेश करेंगे। अब तक की गुफ्तगू के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अबल सवाल भरपूर सलावा जी जी अकबाल इसमत में है, नखुश इसमत में बेशतर मवाद मौजूद है और कुछ बहरुल अनवार से भी लिया गया था, उसकी तलखीस बहरुल अनवार की आ गई है मार्केट में, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। हर इमाम के हवाले से उसमें मवाद मौजूद है और तकरीबन 12 जल्दें हैं और हर इमाम से मुतालिक उसमें तफसील मौजूद है। और जब हमने नखुश इसमत के बाद बहरुल अनवार को कंसल्ट किया तो यकीन कीजिए तकरीबन 80% मवाद बहरुल अनवार का जो तलखीस की सूरत में मौजूद है वो हमें नक़्श इस्मत में ऑलरेडी मिल गया था। तो बेहतरीन किताब है, उसका हर लफ्ज़ हर सतर जो है वो याद करने के काबिल है, अमल करने के काबिल है। नहीं मेरे ख्याल में अगर आप सवाल पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं, वरना अखबार तो हमने तकरीबन 10-12 आपके लिए कलेक्ट किए थे। अगर आप कहें तो अखबार हम आपको 10 मिनट और इजाफी लेके सुना दें, जो आप बेहतर समझें। सवाल जवाब कर लें या अखबार जी चलिए, फिर हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। एक दुरूद पढ़ दे अकवाल जर्री इमाम की अकवाल हकीमाना मुख्तसर सी तशरी। लोगों से बेजा बहस मत करो कि तुम्हारी आबरू खत्म हो जाएगी, और ज्यादा मजाक ना करो कि लोगों को तुमसे बात करने की जरूरत पैदा हो जाएगी। आजकल देखिए छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, सियासी खबरों पर तबसरा होगा, किसी मैच पर किसी खिलाड़ी की कारकर्दगी पर तबसरा होगा, किसी तकरीब में खाने पर तबसरा होगा, और इस तरह वो आपस में उलझ पड़ते हैं कि असल बात गायब हो जाती है। और यही बात हमने तारीख के हवाले से आपसे कही थी कि तारीख में वो वाकयात आप अपने अपने अंदर समोए अपने जहन में रखें कि जिनसे कोई मैसेज मिलता है, जिससे आपका इखलाक दुरुस्त होता है। वरना अगर आप बेकार की बहस करेंगे फ़कत अपने आप को सच्चा और सुपीरियर जाहिर करने के लिए, तो अव्वल तो अगर आप बहस में जीत भी गए तो वो शख्स आपकी कभी कदर नहीं करेगा कि आपने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा बहस करने से आदमी अपने हैसियत से नीचे आ जाता है, सतही अंदाज से, बाजारी अंदाज से और गैर मौजू अल्फाज से अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। तो बेजा बहस का अंजाम यही होता है कि ना सिर्फ ये है कि गुफ्तगू का असल मकसद नापैद हो जाता है, बल्कि जो है इंसान जो है वो गलत बातों को भी सही बात करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो बदतमीज़ हों, बद तहजीब हों, जाहिल हों, कालू सलाम, यानी उनको उनसे सलाम कह के आगे निकल जाओ। दूसरा अवल, अहमक का दिल उसकी ज़बान में होता है और हकीम की ज़बान उसके दिल में होती है। जो मुंह में आए वो बक दे, अरे वो बड़ी बोल्ड है भाई लड़की, वो किसी को नहीं छोड़ती। अपनी फूफी को एक वक्त सबके सामने चुप करा दिया था उसने, अरे भाई ये बोल्डनेस नहीं, ये बदतमीज़ी है। तो जो मुँह में आए आप कह दें आपकी बड़ी बोल्ड है, ये तो मतलब ये कि आदमी जो है वो बेहिजाब है, आप कहते हैं भाई ये लड़की बड़ी बोल्ड है, ये लड़का जो है वो गालिम गलम गलोच कर रहा है, आप कहते हैं भाई लड़का बड़ा बोल्ड है, नहीं बोल्डनेस नहीं, ये बदतमीजी है, ये गुनाह है जिसे कहते हैं। तो अहमक का दिल उसकी जबान में होता है, नहीं जो मुंह में आए जो दिल चाहे आपने बोल दिया, इसको कहते हैं हिमाकत। और हकीम की जबान उसके दिल में होती है, यानी पहले वो सोचता है कि मेरा कहने का मकसद जो है कोई मायने रखता है, मैं जिसके सामने कह रहा हूँ कहना चाहिए, क्या ये वक्त मौजू है ऐसी बातें करने का, खुशी के मौके पे गम की बातें, गम के मौके पे खुशी की बातें, क्या मेरी बात तुलानी तो नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। किसी गम रसीदा के सामने खुशी का इजहार करना अदब व तहजीब के खिलाफ है, कोई शख्स इम्तिहान में फेल हो गया और आप रिजल्ट का तस्करा लेके बैठ गए, क्या हो भाई तुम्हारा कौन सा ग्रेड आया, आपको मालूम है कौन सा ग्रेड आया, चार लोगों के सामने आप पूछ रहे हो भी कौन सा ग्रेड आया, और या जिसका जो उसका वीक पॉइंट है आप उसके बारे में तस्करा करने शुरू कर दिए। एक माँ ने कहा कि बेटा देखो मेहमान आ रहे हैं, उनकी नाक के बारे में कोई बात नहीं करना। क्यों? मतलब बस मैंने कह दिया उनकी नाक के बारे में कुछ नहीं कहना। जब वो मेहमान आए तो बेटे ने फौरन चिड़की कहा, अम्मी आप तो कह रही थी इनकी नाक के बारे में कुछ नहीं कहना, इनकी तो नाक ही नहीं है। तो अब आप देखिए जानबूझ के वही तस्करा करना जो जो उनका वीक पॉइंट है। आप जो किसी की रंगत के बारे में, किसी के दुबलेपन के, किसी के मोटापे के बारे में, किसी की गुर्बत के बारे में, किसी के लिबास के बारे में, ये सब जो बातें जो है सब जिसे कहते हैं कि हिफारत में आती है तहजीब व अदब के खिलाफ। इमाम इनका एक और कॉलेज जिसने अपने ब्रदर मोमिन को पोशीदा तौर से नसीहत की उसने उसको आरास्ता किया, और जिसने ऐलानिया नसीहत की उसने उसके साथ बुराई की। बच्चा जो है वो अपने बड़े को कुछ कह रहा है तो अम्मी ने फौरन कहा कि बेटा तुम्हें मालूम नहीं है कि सबके सामने नहीं बोलते, सबके सामने नहीं डांटते, अकेले में डांटते, पता लगे अम्मी खुद डांट रही है सबके सामने। तो ये जो है हकीकत में हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा कितना ही बड़ा गुनाह, कितना ही बड़ा जुर्म, कितनी बड़ी गलती हो जाए आपकी औलाद से, अगर आप अकेले में समझाएंगे यकीन कीजिए इतना असर होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने तो तवक्को ही नहीं की थी इतनी। और एक छोटी सी बात होती है, आप जो है वो बच्चे के दूसरों के सामने आप खुसूसन छोटी औलाद को बड़ों बड़ी औलाद को छोटों के सामने आप कह दें, और सारी सी बात वही कहेंगे भी अब मैं बदनाम तो हो ही चुका, अब क्या फायदा अच्छा बनने का, अब मुझ पर लेबल तो लग ही गया। किसी शख्स का एहतराम इस बात के जरिए ना करो जो उसके लिए बायस जहमत हो। अब देखिए ये सब ड्राइवर साहब को सलाम कर रहे हैं जापानी अंदाज से, तो ये कोई अंदाज नहीं है आप ट्रक के आगे आगे सामने खड़े हो गए और जैसे कहते हैं सलाम कर रहे हैं। अभी हम गए थे तो वो कूफे की मस्जिद के जो पेशे माम थे लोग उनके पीछे बढ़ गए, आगे पीछे घूम रहे चूम रहे हैं जिसे कहते हैं, किसी ने उनको जो है वो कलम दे दिया मुझे ऑटोग्राफ दे दे, और इस तरह उन पर पल पड़े जिस तरह हमारे यहाँ जुलूस में पॉलिटिशियन पे नहीं पल पड़ते। यकीन कीजिए वो गुस्से में अपना दामन छुड़ा के भागे, ये क्या बदतमीजी है आप लोगों की। तो किसी से जिसे कहते हैं कि इतना प्यार मोहब्बत का इजहार करना कि जिसे कहते हैं वो खुद पागल हो जाएंगे, भाई ये क्या बदतमीजी है। तो इतना एहतराम, मतलब आपने कह दिया कि सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी आपको जो है वो टाइम लिया, सॉरी आपसे बात हो सकती है मुनासिब तो नहीं है इस वक्त आपको फ़ोन करना, लेकिन हमने कहा पहले आप बात कर, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं आपसे बात करें, भाई इतनी देर में तो आप बात करके ख़त्म कर चुके होते, आप इतनी बड़ी तबीहत बांध रहे हैं माजरत की और उसकी। तो ये अंदाज एहतराम का बहुत दूसरों के लिए तकलीफ दे होता है। जिस रिस्क की तुम्हें जमानत दे दी गई है वो तुम्हें इस अमल से ना रोके जो तुम पर फ़र्ज कर दिया गया। होम डिलीवरी पिज़्ज़ा की हो, ब्रोस्ट की हो, बर्गर की हो, टिक्के की हो, बिरयानी की हो, इस बात ने इस बात को बहरहाल साबित कर दिया है कि रिजिक आपके पीछे उस तरह आता है जिस तरह आपकी मौत। किसी शख्स ने कहा कि अगर मैं खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाऊं तो मेरा रिजिक कहां से आएगा, तो मौलाना ने जवाब दिया वहां से जहां से तेरी मौत आएगी। तो रिजिक मिलकर रहेगा, इसकी फिक्र ना करें, लेकिन इस चक्कर में उन वाजिबात को ना भूल जाए, उन अमाल को ना भूल जाए जिनको अल्लाह ताला ने आप पर फर्ज कर दिया। रिजिक मिल के रहेगा, फिक्र ना करें आप, लेकिन इसके लिए हलाल हराम की तमीज ना खो बैठे। इसके लालच में आप ईमान हाथ से जिसे कहते हैं कि ना अपने हाथ से निकाल दें। तो अपने वाजिबात को मद्देनजर रखिए, उनको तरजीह दीजिए, उनको फौकियत दीजिए, और रिजक आपको मिलके रहेगा, उसके लिए भी कोशिश करनी है। फिक्र सबसे ज्यादा आपको अपने ईमान की होनी चाहिए। तवाज़ों की एक किस्म यह भी है कि जिस शख्स के पास से गुजरो उसे सलाम करो, और किसी मजलिस में जाओ तो बुलंद तरीन जगह तलाश करने की बजाय उसे कमतर जगह बैठने पर तैयार हो जाओ। आखिरी जमाने की निशानियों में से यह निशानी है कि इंसान फकत उसको सलाम करेगा जिसको वो जानता है, हर किसी को नहीं करेगा। हम लोग भी यही कर रहे हैं, जिससे मतलब निकलता है, जिससे कोई काम हो बस उसी को सलाम, उसी से सलाम दुआ, और बाकी को हम भूल गए। ये तवाज़ो इंकसारी की एक जिसे कहते हैं कि अलामत है, नंबर एक। नंबर दो, आप मजलिस में महफिल में जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। कुछ लोगों को कोशिश होती है कि हम आगे बैठे, ठीक है अगर आप आगे बैठना चाहते हैं तो जल्दी आएंगे, तो कमतर जगह पे बैठने पे आने हो जाएगी। अच्छा एक दफ़ा सादिक साहब ने एक वाक्य भी सुनाया जिसे सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई कि अमेरिका में एक मस्जिद बाकायदा बनाई गई और उसमें मुसलमान अफराद थे, बहरहाल उसमें आते थे, तो कुछ अफराद ने आगे बैठने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया कि ये रिजर्व है। अच्छा उन्होंने ये पहली मरतबा सुना था कि मस्जिद में भी रिजर्व पार्किंग और रिजर्व टेबल की तरह कोई रिजर्व सफ भी होगी। फिर बाद में बताया गया कि इस मस्जिद में बाकायदा मेम्बरशिप है, गोल्डन कार्ड्स है, सिल्वर कार्ड्स है और नॉर्मल कार्ड्स हैं, जो गोल्डन कार्ड्स वाले वो आगे बैठते हैं। और सिल्वर और दूसरे पीछे बैठते हैं। अच्छा, हमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं आया था, हालांकि काबिल मोतबर मौलाना है। हमें अब यकीन आ गया कि हमारे एक दोस्त अभी अफ्रीका से मजलिस पढ़ के आए और उन्होंने कहा कि वहां पर एक ऐसी मस्जिद है कि जिसको लिबनानी बिजनेसमैन लोगों ने बनाया है और उस मस्जिद में किसी काले की एंट्री बंद है, चाहे वो शिया क्यों ना हो। अच्छा, उस मस्जिद में अगली सिर्फ गोल्डन मेंबर्स के लिए, फिर सिल्वर, बिल्कुल वही अंदाज जैसे क्लब्स वगैरह में होता है। देखिए, ये जिसे कहते हैं कि अगर ये अंदाज है तो हम बिल्कुल अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं। जैसे कुछ होटल्स रहते होते हैं अंग्रेजों के यहाँ, जहाँ पे सूट पहने बगैर आप नहीं जा सकते। जो बिरजुल खलीफा है ना आपका, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, वहाँ पे आप कमीज सलवार पहन के नहीं जा सकते आप। यहाँ तो बात, तो यहाँ पे आपको सूट पहनना है, जैसे कहते हैं तो पहन के जाना। हमारे एक दोस्त कराची जेम खाना चले गए चप्पल पहन के, उनको रोक लिया गार्ड ने, भाई आप चप्पल पहने कहाँ जाएंगे। कह लेंगे तो क्या हुआ, बड़ी महंगी चप्पल है। कह लेंगे कितने की होगी, 500 की होगी। गार्ड कह रहा है उनको, वो हक्का बक्का होगी गार्ड को देख रहे, कह लेंगे तुम्हें मालूम नहीं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। कह लेंगे किस लिए आया, कह रहे मैं जज हूँ, यहाँ पे जो स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा है उसका जज हूँ मैं, ज्यूरी में शामिल हूँ। कह रहे नहीं, हमें अलाव नहीं है। उन्होंने फोन किया उन साहब को जिन्होंने बुलाया था, वो साहब आए भागते हुए हफ्ते का, अरे भी क्या हुआ। कह लेंगे ये मुझे मना कर रहे हैं चप्पल के बगैर नहीं जा सकते। कह लेंगे हम क्या करें, जिम कराची जिम खाना की जो है वो कंडीशन है। अच्छा ऐसा करो, गार्ड को फोन कर तुम जूते लेकर आओ उनके लिए। वो बाजा गार्ड जूते लेकर आया, वो जूते पहन के अंदर गए। तो ये हमारे मुल्क कराची पाकिस्तान में भी ये चीज़ें शहर में मौजूद है। तो ये हमें कहाँ चीज़ ले जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल कमतर जगह का इंतखाब करें। कुछ लोगों को टेक लगाने का शौक होता है, अगर बाकी कोई कमर का प्रॉब्लम है तो ठीक है, वरना जिसे कहते हैं कि इजहार तमकुनत या तकब्बुर की अलामत के तौर पर टेक लगाया जाए या तकब्बुर की अलामत के तौर पर ऐसी जगह बैठा जाए कि जिससे आप नुमाया हों, ये इस्लाम ने पसंद नहीं किया। जाहिल इंसान की तरबियत करना और किसी साहिब आदत को उसकी आदत से बाज रखना किसी मौजूदे से कम नहीं। गालिबन ये भी रिवायतों में मौजूद है कि अगर तुम ये सुनो कि कोई पहाड़ अपनी जगह से हट गया हो तो यकीन कर लेना, लेकिन ये सुनो कि किसी शख्स ने अपनी आदत बदल दी है या छोड़ दी है तो उस पर यकीन नहीं करना। यकीनन आदत बनने से पहले गुनाह को छोड़ देना चाहिए और जाहिल से जिसे कहते हैं मुबाहसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जाहिल कोई काम करे, नेक काम करे, अच्छा काम करे, पहले उसको तालीम दे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इसलिए कामयाब नहीं होती कि यहाँ के लोग तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता हो जाए तो शायद वो सही लोगों को वोट दे। जो अल्लाह से मानूस हो जाता है वो लोगों से वहशत महसूस करने लगता है। ये हकीकत बात है, हमारे तमाम काम अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं बल्कि मखलूक को खुश करने के लिए होते हैं। कयामत में बहुत सारे लोग लाए जाएंगे जो ये कहेंगे कि अल्लाह हमें जन्नत दे क्योंकि हमने नेक काम किए। तो अल्लाह कहेगा जाओ उन लोगों से मांगो कि जिनके लिए तुमने नेक काम किए। तो ये भी मुमकिन है कि इंसान नमाज रोज़ा भी रियाकारी के लिए करे, लेकिन अगर इंसान हकीकत में क़ुर्बतन इलल्लाह की नियत रख रहे हो, अल्लाह के लिए काम करे, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, तो फिर वो लोगों से वहशत महसूस करने लगता है। जिस तरह ज़ुलैखा यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, लेकिन जब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलैखा से शादी करने का इशारा दिया और यूसुफ ने जब रुजू किया तो ज़ुलैखा इबादत इलाही में मसरूफ थी। 40 दिन तक यूसुफ पर नजर नहीं की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद में कहा कि ज़ुलैखा तुमको क्या हो गया, पहले तो तुम मेरे इश्क में दीवानी थी। तो ज़ुलैखा ने कहा पहले मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे रब को नहीं। तो हकीकत है कि जो अल्लाह से मानूस हो जाता है वो लोगों से वहशत महसूस करने लगता है। हर शय की एक मकदार और हद मुअय्यन है जिससे ज्यादती नुकसानदेह होती है। यकीनन अगर इबादत की भी ज्यादती हो जाए तो तकब्बुर आने लगता है। बस औकात इंसान को अल्लाह ताला इबादत से फकत इसीलिए बाज रखता है कि वो इतरा ना जाए कि देखो इस महीने मेरी कोई नमाज शब कज़ा ना हो। रमजान में पूरे 2 कुरान खत्म किए मैंने, 2 कुरान विक्ट्री का निशान बना के लोगों को बता रहे होते हैं, देखो 2 तुमने तो 1 किया है। कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, हमारा बस चले तो 1 दिन 2 रोजे रखे, तुमने 30 रखे, हमने 60 रखे। तो ये रियाकारी में जिसे कहते हैं कि आता है कि हर चीज की ज्यादती और कमी दोनों, बल्कि ये कहा गया है मौला का कौल है कि जब तुम्हारी तबीयतें उकता जाए तो फकत वाजिबात पे इक्तफा करो। तो बजाय इसके कि आप पूरा ईमान हाथ से धो बैठे अपने हाथ से, तो कम पर इक्तफा कर लें लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करें। मोमिन के कमाल ईमान की 5 अलामत आपको मालूम है। बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह कहें, खाक पर सजदा करें, दाहिने हाथ में अंगूठी पहने, दिन रात में 51 रकात नमाज अदा करें, रोजे 40 इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़े। दिन रात 51 रकात यानी जो नवाफिल है उनको मिलाकर 17 वाजिबात हैं, 17 रकात और 34 जो है वो नवाफिल है। नवाफिल के बारे में सुन लीजिए, जिस तरह नफली रोजे वाजिब रोजों की कमी पूरी करते हैं इसी तरह नफली नमाजें वाजिब नमाजों की कमी पूरी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओवरलुक और इग्नोर किया जाता है, सरफे नज़र किया जाता है नवाफिल से, तो कम अज़ कम जो नवाफिल आप आसानी से अदा कर सकते हैं, मसलन इशा की जो नफिल है दो रकात, अमूमन बैठ के पढ़ने के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है आप बैठ के पढ़ें दो रकात, बैठे पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। फजर की दो रकात, फर्ज से पहले जो आपको दो मसला पढ़नी होती है वो पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई ऐसा मसला नहीं। मगरिब की भी जिसे कहते हैं पढ़ी जा सकती है, हाँ जहर असर लोगों के लिए ज़रा सी गुना गुजरती है, लेकिन भाई जितनी नवाफिल पे अमल हो सकता है कम अज़ कम आप उस पर आप उसकी इब्तिदा तो करें दो रकात से करें, फिर उसके बाद चार, उसके बाद बाकी। इस तरह नमाज शब के लिए लोग जहनों में टेंशन बिठा लेते हैं कि 11 रकात पढ़नी है, अलफा 300 मरतबा करना है, अल्लामा हज़रतमन्नार 70 मरतबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ठीक है आप एक एक मरतबा कह लें, फ़कत एक रकात पढ़ लें, तीन रकात पढ़ लें, पाँच रकात पढ़ लें, हत्ता के मगरबैन की बात पढ़ लें, कोई मसला नहीं। नमाज फजर से पहले पढ़ना अफजल है, लेकिन मगरबैन की बात ही पढ़ी जा सकती है, कम अज़ कम इब्तिदा तो करें। और याद रखें वाजिब का मतलब ये है, वाजिबात को अदा करने का मतलब ये है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, और नवाफिल अदा करने का मतलब ये है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। गुफ्तगू इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से तमाम